ओम शांति। मैं समझ सकता हूं कि आज मौसम थोड़ा ठंडा है, मगर हम ठंडे हों जरूरी नहीं। ओम शांति। एक और बार बोलेंगे सभी, ओम शांति। आज एम्पावरिंग फैमिलीज पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ है सुबह के सत्र में, और आप सभी लोगों ने बहुत ही उमंग उत्साह के साथ जोर शोर से उस इनॉग्रल सेशन में भी हिस्सा लिया। बहुत सारे हमारे साथी ऑन द वे हैं, थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे, और हमारे पैनलिस्ट का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जब तक पैनल के हमारे सदस्य मंच पर आते हैं, तब तक मैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली परिचय करा देना चाहता हूँ। आज हमारे पैनलिस्ट हैं सर्वप्रथम राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारी इसके वुमेन्स विंग के, वो इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। साथ में राजयोगिनी सरला दीदी जी, जो चेयरपर्सन हैं राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का रूरल विंग है, जो ग्राम विकास प्रभाग है उसकी अध्यक्षा हैं, वो भी हमारे बीच थोड़ी देर में पहुंचेंगी। मैं अगर सभा में हमारे दूसरे पैनलिस्ट मौजूद हों तो उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं श्रीमती गुरजीत कौर जी, जो चेयर क्षमा करें जो निदेशिका हैं मानव रचना रेडियो FM से। मैम हमारे बीच हैं, करतल ध्वनि से श्रीमती गुरजीत कौर जी का स्वागत करें ताकि वो आए और मंच को अलंकृत करें। मैं साथ में आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर श्रीमती शीला काकड़े जी को, जो पेट्रन हैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली से। मैम हमारे बीच हैं तो उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत करें कि वो मंच पर पधारें। मैं साथ में मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मिस स्वस्तिका जी को, जो डायरेक्टर हैं आत्मीय एजुकेशन इंस्टीट्यूट राजकोट से। उनसे भी निवेदन है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मिस स्वस्तिका जी, प्लीज मैम आइए। श्रीमती शीला काकड़े जी, स्वस्तिका जी भी हमारे बीच हैं, स्वागत है आपका। प्लीज, थैंक यू। एक बहुत ही सुंदर समय है और ये शाम हमें कुछ अच्छा सोचने के लिए भी प्रेरित कर रही है। इससे पहले कि हम इस पैनल डिस्कशन का आगाज करें, जैसे भारत की पुरातन परंपरा रही है, आध्यात्म की संस्कृति रही है, हम हर कार्यक्रम की शुरुआत एक मंगल विचार से करते हैं। कुछ घड़ियां उस परम सत्ता को हमारे बीच आमंत्रित कर इस कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं, 2 मिनट उस प्रभु स्मृति में।
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
साथियों, आज का ये शाम का पैनल डिस्कशन एक बहुत ही सुंदर विचार को लेकर चलता है। इस साल के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का जो अम्ब्रेला थीम है वो है एम्पावरिंग फैमिलीज। परिवार के सशक्तिकरण के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो स्वाभाविक है जो इस परिवार के मुखिया हैं उनके बारे में सोचना। भले आज फैमिलीज के जो ब्रेड विनर्स हैं, अर्निंग मेंबर्स हैं, कई सदियों तक वो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स रहे, मगर आज वो परिस्थिति नहीं है। समाज बदलता रहा है और आज नारी शक्ति भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज को लेती हैं और एक इक्वल कंट्रीब्यूशन भी परिवार में देती हैं। सिर्फ परिवार का भरण पोषण ही नहीं, लालन पालन ही नहीं, मगर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आज महिलाएं इक्वली शोल्डर करती हैं। एक ऐसे समय पर जब सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी परिवार का भरण पोषण हो या फिर लालन पालन ही नहीं, मगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो तब पता चलता है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं एक परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। अक्सर जो ब्रेडविनर्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो नौकरी में ज्यादा बिजी होते हैं, इस कारण वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते, पारिवारिक संबंधों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। मगर महिलाएं आज जॉब्स भी कर रहे हैं, बिजनेस में भी हाथ बटा रहे हैं, अपने अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स में एक्सेलेंस भी हासिल कर रही हैं और साथ साथ घर परिवार को भी संभाल रही हैं, उन्हें भी एक अच्छी दिशा दे रही हैं। तो परिवार का सशक्तिकरण अगर आज के समय पर प्रासंगिक है तो वो महिलाओं के सशक्तिकरण से ही संभव हो सकता है। आज के इस सेशन का बहुत ही सुंदर विषय है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। एक बहुत ही गहरा विषय है, इस पर हमारे बहुत ही एबल पैनलिस्ट आज हमारे साथ हैं, वो सभी अपनी राय रखेंगे। फिर थोड़े प्रश्न हैं हम सबके मन में भी होंगे, कुछ प्रश्नों को मैं प्रस्तुत करूंगा और हमारे पैनलिस्ट उसका समाधान भी करेंगे, उनकी राय भी रखेंगे। और कुछ समय पश्चात इस पैनल डिस्कशन के अंदर आपकी भी आवाज को मौका दिया जाएगा। अगर आप में से जो हमारे साथी हॉल में बैठे हैं अगर वो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी अपने प्रश्न लिखकर मंच पर साझा कर सकते हैं, मैं उन प्रश्नों को हमारे पैनलिस्ट के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप अपनी भी तैयारी रखें, एक ओपन माइंड से आप जो भी चीजें सुन रहे हैं उस पर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई राय आप रखना चाहते हैं या कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए एक निर्धारित समय तय किया हुआ है। तो ये इस पैनल डिस्कशन की रूपरेखा है। तो सर्वप्रथम मंच पर जो हमारे तीन पैनलिस्ट मौजूद हैं उन तीनों का मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से और सभा में उपस्थित आप सभी की ओर से स्वागत करता हूं। तहे दिल से हमारे पैनलिस्ट का स्वागत करें। सर्वप्रथम हमारे सामने शीला काकड़े जी बैठे हैं, मैं उनसे पहले भी परिचित हूं और ये सौभाग्य है कि मुझे वापस उनका परिचय कराने का मौका मिल रहा है। वो पेट्रन हैं ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली के। उनके वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए लगभग 3 दशकों के समय में उन्होंने अभूतपूर्व सेवाएं की हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी अनेकों जगह उन्हें इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। सिर्फ अपनी बात कहने का ही नहीं मगर पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला है। 2023 में अप्रैल 2023 इसी साल में उन्हें अपॉइंट किया गया रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ IAW। उससे पूर्व जनवरी 2020 से 2023 तक वो प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के, जो एक ऐसा एनजीओ है जो महिलाओं के क्षेत्र में 97 सालों से काम कर रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से चिर परिचित होंगे ही। साथ में उनके काम को लेकर उन्होंने यूएन के संयुक्त राष्ट्र के अनेकों कार्यक्रमों में भागीदारी की है। आज हमारे बीच आदरणीय शारदा दीदी जी पहुंच चुके हैं। मैं दीदी जी का भी स्वागत चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करें। दीदी जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वुमेन्स विंग के। स्वागत है दीदी जी आपका। अब मैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट का परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ स्वस्तिका दीदी जी विराजमान हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। ये प्रिंसिपल हैं आत्मीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट राजकोट से, हमारे बीच पधारे हैं। एक डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर हैं योगी डिवाइन सोसाइटी हरिधाम सुखाड़ा के, और ये प्रेसिडेंट हैं अवेक के, जो आत्मीय वुमेन एसोसिएशन फॉर नॉलेज एंड एम्पावरमेंट, और साथ साथ प्रेसिडेंट हैं श्री एम एन विरानी साइंस कॉलेज राजकोट के। अपने सेवा के क्षेत्र में इन्होंने अनेकों योगदान दिए हैं। अनेकों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लीडरशिप की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रही है, जिसका उन्होंने कुशल प्रशासन किया है। एक कार्यकर्ता के रूप में युवती मंडल को उन्होंने लीड किया है, मेंटर हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल असेंबलीज के, अनेकों हॉस्टल्स में इनके कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। आज हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका दीदी जी स्वागत है। स्वागत है। अब हमारे मध्य में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी हैं। दीदी जी को आज सुबह के सत्र में भी आपको सुनने का और उनसे मिलने का मौका मिला होगा। दीदी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता हैं। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से आप एक राजयोग शिक्षिका के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज, जो संसार की सबसे बड़ी वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, उनके आप राजयोग शिक्षिका भी हैं। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय में होने वाले अनेक कार्यक्रमों का दीदी जी कुशल संचालन करते हैं। अनेक सेशंस के आप स्पीकर हैं। अनेक क्रिएटिव प्रोग्राम्स जो ब्रह्मा कुमारीज में होते हैं वो भी दीदी जी के निर्देशन में होते हैं। तो दीदी जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे एक और वक्ता जो आज के कार्यक्रम में आएंगे, आदरणीय सरला दीदी जी, थोड़ी देर में वो हमारे बीच पहुंचेंगे। जैसे दीदी जी आएंगे मैं दीदी जी का परिचय भी आप सभी को कराता हूं। हमारे साथ अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर गुरजीत चावला जी विद्यमान हैं। इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर गुरजीत चावला जी डीन हैं स्टूडेंट वेलफेयर के और निदेशिका हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के और मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज के स्टूडेंट वेलफेयर के डीन हैं। आपने अपने कार्य के क्षेत्र में जितना एजुकेशन के फील्ड में आपका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके साथ साथ आप बोर्ड मेंबर हैं द फाउंडेशन फॉर ग्लोबल कम्युनिटी हेल्थ स्टडीज साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर, और साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंटरनेशनल कंसल्टेशन ऑन वर्कसाइट हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं उसके भी आप मेंबर हैं। आपके परिचय में तो अनेकानेक चीजें हैं, देश और विदेश में सेवाओं का अनुभव आपका काफी गहरा और लंबा है। भारत के बाहर भी आपने अनेकों प्रोग्राम्स का संचालन किया है। जापान में यूनिसेफ के अनेकों प्रोग्राम्स के लिए भी आप काम करते रहे हैं, और साथ साथ कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कांग्रेस 2010 के भी आप कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो ऐसे एक बहुत ही रिच पैनल आज हमारे बीच विद्यमान है, तो आप सभी का मैं पुनः स्वागत चाहता हूं। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करता हूं कि पैनल पर उपस्थित हमारे सभी मंचासीन महानुभावों का स्वागत करें बैज के द्वारा, और हम पैनल की ओर आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम शारदा दीदी जी का गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं, श्रीमती गुरजीत कौर जी का। श्रीमती शीला काकड़े जी का, स्वस्तिका दीदी जी का भी गुलदस्तों से स्वागत हो रहा है। ये पुष्प सांकेतिक मात्र हैं हमारी खुशी को प्रकट करने के लिए कि आज इस सुंदर मौसम में, जिस बहार में हम सभी हैं, उसी बहार को आज हम हॉल के अंदर लाने का ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और फूलों के द्वारा हमारे सभी पैनलिस्ट का हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय सरला दीदी जी भी पहुंच चुके हैं। मैं दीदी जी का भी स्वागत चाहता हूं। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का भी स्वागत चाहते हैं। आदरणीय सरला दीदी जी, सरला दीदी जी का भी पुष्पगुच्छों से एवं बैज से स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय सरला दीदी जी 1965 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े, आज आपके कुशल नेतृत्व में लगभग 36 शहरों में और 800 गांवों में 20,000 से अधिक भाई बहन आपके नेतृत्व में राजयोग का निरंतर अभ्यास करते हैं। वर्तमान समय आप अध्यक्ष हैं राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम विकास प्रभाग के, जिसके तहत अनेकों कृषि विश्वविद्यालयों में शाश्वत योगिक खेती के नाम से एक नए खेती की उपज की जा रही है, जिस पर हजारों किसान मिलकर कार्य कर रहे हैं। आपके इस कार्य को देखते हुए अनेक सरकारों द्वारा अनेकों कार्यक्रमों में आपको वक्ता के रूप में आयोजित कार्यक्रमों में आपको वक्ता के रूप में बुलाया जाता है। हाल ही में प्रयागराज कुंभ में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको किसान मेले में एक विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। आज दीदी जी हमारे बीच मौजूद हैं। दीदी जी, आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज के विषय पर आते हैं। ये जो आज का पैनल डिस्कशन है वो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर वैल्यू बेस्ड सोसाइटी है। भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है। यहाँ की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को विश्व भर में माना जाता है। आज अगर लोग कहीं पर आध्यात्म के बारे में जानना या समझना चाहते हैं तो बहुतायत में लोग भारत आते हैं, यहाँ की योग परंपराओं को, यहाँ के आध्यात्म को, यहाँ के दर्शन को समझने के लिए आते हैं। और जितना इन चीज़ों के बारे में हम समझते हैं, बहुत ही एक गलत मान्यता या एक प्रबुद्ध मान्यता नहीं है, वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि ऋषि मुनियों के पास, साधु संतों के पास ही ये आध्यात्मिक विरासत है। अक्सर करके इसे भी एक पुरुष प्रधान समाज ने ही इसका बीड़ा उठा रखा है, ऐसा लोग समझते रहे हैं। मगर भारत के इस पुरातन संस्कृति में गर्गी, मैत्रेयी, मदालसा जैसे अनेक विदुषियां हुई हैं जिन्होंने आध्यात्म की एक ऐसी अलख को जगाए रखा जो आज भी महिलाओं को आध्यात्म के क्षेत्र में भी अग्रसर करने के एक उदाहरण के रूप में नजर आती हैं। तो मैं पैनल में सर्वप्रथम हमारे सभी पैनलिस्ट से अनुरोध करता हूं कि वो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें इस विषय पर, 3-4 मिनट में उनके विचार व्यक्त करें कि वो आध्यात्मिक सशक्तिकरण और महिलाओं के सशक्तिकरण के विचार में क्या विचार रखते हैं, क्या उनकी सोच है। मैं सर्वप्रथम शारदा दीदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें।
ओम शांति। हमारे आज के पैनलिस्ट एंकर श्रीनिधि भाई और आप सभी मेरी सम्माननीय बहनें, बहुत सुंदर विषय पर कि वेमेन एम्पावरमेंट से वैल्यू बेस्ड सोसाइटी किस प्रकार से बन सकती है. द फर्स्ट थिंग, वैल्यूज आर नॉट टॉट बट कॉट. आज एक सिंपल एग्जाम्पल, वर्ल्ड के रोल मॉडल, चाहे महिलाओं में ले लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट है. मदर टेरेसा हो, वैलेंटिना टेरेस्कोवा हो, कल्पना चावला हो, विलियम हो. और आज के बिजनेस के क्षेत्र में देखें, एरोनेट के क्षेत्र में देखें, महिलाओं ने बहुत प्रोग्रेस की है. लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर आ जाएं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को देखें, वी कैन काउंट ऑन टिप्स, बट ग्राउंड लेवल क्या है. जो आज स्कूल में मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज टीच करने पड़ते हैं, हम अपनी एंशियंट रिच कल्चर को देखें, फैमिली के एक एक क्षण में हम ऑटोमेटिकली वैल्यूज को सीखते थे. अगर मैं अपने चाइल्डहुड में चली जाऊं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स और मर्यादाएं हमारे लिए थी. 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकते थे, और बाहर जाते थे अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन हो तो माँ पूछती थी, कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो और कितनी देर में लौटेंगी. आज हम अपने बच्चों को नहीं पूछ सकते. अगर मैं कहूँ पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा हो गया है कि वो फैमिली वैल्यूज को भी आज रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. हम वैल्यूज को सिखाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरी लाइफ ही एम्बॉडीमेंट ऑफ वैल्यूज हो जो इस इंस्टीट्यूशन में हम सीख रहे हैं. और फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा ने इतनी वैल्यूज को नेचुरल हमारी लाइफ में ला दिया है कि हमको लाने की या एफर्ट्स करने की भी जरूरत नहीं रही है. आज का इंटेलेक्चुअल इंसान एक ऐसे जंक्शन पर आकर खड़ा हुआ है जहां वो चारों ओर वैल्यूज को ढूंढ रहा है, लेकिन हम अपने आप ही वैल्यूज को डिग्रेड कर रहे हैं. कहते हैं सच बोल करके आज की इस दुनिया में कोई जी नहीं सकता है. जोश और क्रोध ना करें तो कोई हमारा सुनेगा ही नहीं. मेरी सोच वैल्यूज के अगेंस्ट हो गई है. बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं, कहना नहीं मानते हैं. कारण, वो हमें खुद अपने अंदर सर्च करने की जरूरत है. एक्चुअली वैल्यूज आर पेरेंट्स ऑफ अवर ह्यूमन लाइफ. अगर हम अपनी लाइफ में से पेरेंट्स को निकाल देंगे तो वो लाइफ क्या रहेगी. ये ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल वैल्यू बेस्ड लाइफ हमें बनाना सिखाती है, और वो इतना नेचुरल एडॉप्ट हो जाते हैं कि सोचने वाला और जिसने पहले मुझे देखा हो और आज वो देखे तो दांतों तले उंगली दबा लेता है, क्या ये वही है. इतनी एम्पावरमेंट उस स्पिरिचुअल नॉलेज में है जो हमें थर्ड आई ऑफ विजडम देता है. मॉर्निंग में उठते ही पहले बच्चे माता पिता के पांव छूते थे, उनकी आशीर्वाद लेते थे, आज वो समय नहीं है. तो कम से कम एटलीस्ट आई हैव टू से माई सेल्फ गुड मॉर्निंग शारदा, कि आपकी आज की प्रभात तो शुभ हो. वेल बिगन इज हाफ डन. अपने आप को मैं अप्रिशिएट करूं, अपने अंदर जो वैल्यूज हैं, क्वालिटीज हैं, कि आप एक यूनिक पर्सनालिटी है, आज का आपका दिन बहुत स्पेशल हो, बहुत सक्सेसफुल हो. इससे हम अपना प्रतिदिन का इनिशिएशन करें तो मैं समझती हूँ वो पॉजिटिविटी सारा दिन के हमारे सोच में, बोल में, एक्शन में, बिहेवियर में बहुत कुछ वैल्यूज को रियलाइज कराएगी. ऑप्शन थी.
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी. आपने आज के वास्तविक परिप्रेक्ष्य को एक आईना दिखाया है कि हम देख तो रहे हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन है, जेंडर इक्वालिटी बढ़ रही है, मगर एक्चुअल रियलिटी चेक क्या है. जब हम पलट कर देखते हैं तो आज हमारे फैमिली के स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे जो वैल्यू के सिस्टम्स हैं वो क्या है. डॉक्टर गौरजीत कौर हमारे साथ हैं. मैम, क्योंकि आपका फील्ड एजुकेशन का रहा है और आप आज भी एजुकेशन के फील्ड में युवाओं के साथ काम भी करते हैं, आप क्या देखते हैं आज का जो विषय है, एक स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का परिप्रेक्ष्य जो है, एक मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में वो कहाँ है, कहाँ उसे हमें और बढ़ाने की जरूरत है.
ओम शांति. सबसे पहले मंच में विराजमान सभी मेरे पैनलिस्ट, राजयोगिनी जी, बी के शारदा जी, राजयोगिनी बी के सल्ला जी, स्वस्तिका बेन एंड शीला जी को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम, और सभी मन से नीचे जितने भी भाई बहन बैठे हैं उन सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार. आज यहाँ पर ज्ञान सरोवर में आने का मुझे आज पहला मौका मिला है, और इस डेढ़ दिन में जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने सुना है, जो भी हमने जाना है, उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आज बहुत दिल से और मन से अपनी बात कहूंगी. तो आपने श्रीनिधि जी एक प्रश्न किया कि क्योंकि मैं यूथ के साथ मेरा रोज का उठना बैठना है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जहां हम वैल्यूज की बात करते हैं, एक बात मेरे मन में बहुत ज्यादा गहन करती है. जैसे मैम ने बताया, कम्युनिकेशन. हम जब स्टूडेंट से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चे आके बोलते हैं कि मैम हम मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मेरा पैशन तो म्यूजिक है, मेरा पैशन तो डांस है. तो मैं कहती हूँ बेटा आपने 4 साल क्यों इंजीनियरिंग में लगाए जब आपने अपना प्रोफेशन जो है म्यूजिक या डांस लेना था. तो वो बोलते हैं कि मैम पेरेंट्स सुनते ही नहीं हैं, मैम पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको अपने बच्चों को एज अ इंजीनियर या डॉक्टर देखना है या किसी और मकाम में देखना है. तो मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट्स हम ये सोचें कि वो बच्चा बाहर जाके जब बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो घर में क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहा है. हम कहते हैं कि आज के बच्चों में तहजीब नहीं है, आज के बच्चे अपने संस्कार भूल गए हैं. पर सही माने में पूछिए तो मैं इसको दोषी अपने आप को मानती हूँ. हम अपनी जनरेशन जो हम माता पिता हैं हम मानते हैं, क्योंकि क्या आप प्रश्न कीजिए अपने से, क्या हम बच्चों को उतना समय देते हैं? आज अगर घर पे बच्चा आता है और वो अपनी बात कहता है, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता उनसे पूछने कि बेटा पूरा दिन आपने क्या किया, पूरे दिन में आपने कुछ खाया या नहीं खाया. इतने व्यस्त रहते हैं हम अपने कामकाजी चीजों को लेकर. तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए अगर हम उनमें वैल्यूज डालना चाहते हैं. सुबह के सत्र में जो बात कही गई कि एप्रिसिएशन, Now that is very, very important. We should try to appreciate each and every step, little things of our child. एक छोटी सी मैं आपसे साझा करना चाहूंगी. एक स्टूडेंट था, या कोई भी बच्चा जब घर पे आता है रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और वो मार्क्स लाता है 25 में से 5, तो हम एज अ पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं. सिर्फ 5 नंबर लेकर आए हो, कहा था पढ़ाई कर लो, क्यों नहीं पढ़ाई करी? पर हम कभी भी ये नहीं कहते, इस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करते कि वो अपनी मेहनत से 5 नंबर तो लेकर आया है. तो हमें वो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना बच्चों की, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. और अगर हम वो अप्रिशिएट करते हैं, अगर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं जैसे भी वो हैं, और अगर हम उन्हें अडेप्ट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, देन डेफिनेटली द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी चेंज. हम बहुत कुछ कर सकते हैं नारी में. मैं एक्चुअली बीके श्रीनिधि जी ने मुझे एकदम से प्रश्न ले लिया, पर मैं 2-4 लाइनें लिखकर लाई थी नारी के लिए, और ओपनिंग रिमार्क्स के लिए लिखना लाई थी. तो अगर आप मुझे समय दें तो मैं बोलना चाहूंगी, नारी मान है, सम्मान है. नारी हमारी संस्कृति की शान है. नारी शक्ति है. नारी जीवन ज्योति की अभिव्यक्ति है. नारी उत्कृष्ट है, अभिलाषा है. नारी नर हृदय की आशा है. नारी प्रथम है, जिम्मेदारी है. नारी बिना अधूरी दुनिया सारी है. नारी बिना अधूरी दुनिया सारी है. तो जब हम मानते हैं कि नारी बिना अधूरी दुनिया सारी है, तो हम क्यों एम्पावरमेंट की बात करते हैं? विमेन, नारी हमेशा से एम्पावर्ड रही है और हमेशा एम्पावर्ड रहेगी. पर ये जो आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी पावर को भूल गए हैं. ये जो पावर जो हमारी लुप्त होती जा रही है, ये जो हमारी शक्ति है लुप्त होती जा रही है, इसको हमें वापस लेकर आना होगा. और जैसे सुबह उषा दीदी ने बताया कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हु एम आई, ये क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी है. हम सबको ढूंढना चाहिए कि हम हैं कौन. हम सबको ज्ञात करना चाहिए कि हम हैं कौन. और ये कैसे आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से आएगा, मेडिटेशन से आएगा, योग से आएगा. जैसा दीदी ने बताया अभी, शारदा दीदी ने, कि बहुत सारी महिलाएं, अगर हम इतिहास में जाते हैं, सीता माता हैं जो सहन शक्ति की एक प्रतिमा मानी जाती है, माता गुजरी हैं जिन्होंने महीनों गुजार दिए ठंडे बुर्ज में अपने पोतों को दुश्मनों से बचाने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हैं, अहल्या बाई हैं, मैम ने बताया मदर टेरेसा हैं, एपिटोम ऑफ सेक्रीफाइस. आज के जमाने की अगर हम बात करें, मैरी कॉम, पीटी उषा, चंद्रो दादी, प्रकाशो दादी जो शूटिंग के लिए बहुत जानी जाती हैं, उन सब ने क्या किया? उन सब के पास भी वही शक्ति थी जो हम सब के पास शक्ति है. बस सिर्फ जरूरत है उन्हें पहचानने की, उनको यूज करने की, अपने परिवार को साथ लेकर चलने की. उन्होंने जो मकाम हासिल किया, उन्होंने अपने परिवार को कभी भी इग्नोर नहीं किया. अगर हम सब की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने जो भी सैक्रिफाइस किए, जो भी बलिदान दिए, उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए दिए. और आई थिंक हम सभी को ये जो प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ ज्ञान सरोवर में, ये इसकी कोई मोल नहीं है, अनमोल है. हमें यहाँ से अगर हम 1% भी कुछ लेकर जाते हैं, दैट मीन्स वी कैन ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरजी जी. शीला काकते मैम हमारे साथ हैं. मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ओपनिंग रिमार्क्स दें.
हेलो, ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे ज्ञान सरोवर में आने का मौका बाबा ने दिया. आई एम ब्लेस्ड, एब्सोल्युटली ब्लेस्ड. मैं एक बार आई थी यहां, सिर्फ देख के गई थी. बाकी मैं शांतिवन में, मधुबन में, पांडव भवन में रही हूँ, पर ज्ञान सरोवर में रहने का मौका आज मिला, तो इसके लिए मैं प्रभु के शुक्रिया करती हूँ. शारदा दीदी के मतों के साथ मैं एकदम सहमत हूँ. वैसे कुछ जी की मत भी एकदम सही है. हमने मैं आई स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट मैंने जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया श्री निधि जी ने कि 97 इयर्स ओल्ड एंड वी स्टार्टेड ऑफ बिकॉज फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट. उस जमाने में 100 साल पहले स्त्रियों के लिए एजुकेशन बहुत कठिन था, नहीं होता था. इस कारण से ये संस्था ने एजुकेशन का काम शुरू किया. उसके बाद उनको एम्पावर, सब लोगों ने यही माना कि अगर उनके हाथ में पैसे आ जाते हैं, वो अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं, तो देन दे आर एम्पावर्ड. आफ्टर वर्किंग फॉर 40 इयर्स इन द सेम फील्ड और सेम काम करते हुए, 3 साल पहले जब मैंने प्रेसिडेंटशिप ली और कोविड शुरू हुआ, उस दरमियान मैंने राजयोगा मेडिटेशन कोर्स किया ऑनलाइन. और धीरे धीरे जैसे एक एक दिन कोर्स का होता गया, मुझे समझ आ गई मैं कौन हूं, मैं क्या काम कर रही हूं और मैंने क्या काम करना चाहिए. इतने सालों में काम करते करते ऑफिस का जो स्टाफ है, 100 के करीब हमारे ऑफिस का स्टाफ है, दिल्ली में हेड ऑफिस है हमारा, तो सब बहुत नाराजगी आते बराबर, एक तो देर से आना, फिर आते बराबर गुस्सा, इसने मेरे मुझे विश नहीं किया, क्यों नहीं किया, कंपटीशन और हर बात कंपैरिजन में, तो इतना माहौल, खराब माहौल था. तो ऐसा मौका मुझे मिला कि दीदी के साथ, शिवानी दीदी के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला और हमारे सारे जो लोग हैं उनके लिए, यानी ब्रांच के मेंबर्स, लगभग लाख भर के मेंबर्स हैं हमारे, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम लाइन्स एज हेड ऑफिस इज वर्किंग. और वो सब महिलाओं को सशक्त करना यानी पैसे कमाने के लिए उनको सिखाना, ये इस पे ही चले हुए थे. इस सालों साल में जैसे आपने कहा, हम भूल गए हमारे वैल्यूज, जो कि हमारा देश वैल्यू बेस्ड था, हम भूल गए. और फिर देन आई रियलाइज्ड एंड शिवानी दीदी ने वो सेशन में, हमने जूम पे किया था वो सेशन क्योंकि कोविड के दरमियान मिलना जुलना पॉसिबल नहीं था, पर बहुत सारे लोग, शिवानी दीदी का नाम सुनते सारे लोग जुड़ गए थे. उन्होंने एक टिप दी थी मुझे कि एंगर जोन, नो एंगर जोन, ये पोस्टर सारे ऑफिस में लगाओ, घर में लगाओ. एंड आई एम अ पीसफुल सोल, वो लगाओ. मैंने आई एम अ पीसफुल सोल ये मेरे ऑफिस डेस्क पे लगाया. नो एंगर जोन के तुरंत दूसरे दिन मैंने ये लगाए. थोड़े दिनों उसमें ये क्या है, सारे लोग आते हुए मुझे पूछते थे, नहीं यहां गुस्सा होना नहीं है, अगर आपको कुछ बात कहनी है तो शांति से आकर कहनी है. धीरे धीरे समझ में आ गई बात. फिर उसके बाद दूसरा मुझे मौका ऐसा मिला कि ब्रह्म कुमारी के दूसरे टीचर्स के साथ, दीदियों के साथ, मैंने स्टाफ के लिए सेशंस शुरू किए, ऑनलाइन ही करे. धीरे धीरे उनको बहुत समझ में आ गया और इतने दे वर रियली हैप्पी एंड आई कुड सी द चेंज इन देम. जो आपने बताया वैल्यूज का, वो सारी बातें उनके समझ में आ गई और 3 साल में एकदम शांति हो गई ऑफिस स्टाफ. जबकि कोविड के दरमियान, और हमारा प्रॉपर्टी काफी बड़ी है वहां पे, बैंक्स मर्ज होने के कारण इट वॉज वेकेटेड एंड वी हैड क्रंचेस, फाइनेंशियल क्रंचेस. वी कुड नॉट गिव द स्टाफ देयर इंक्रीमेंट्स, देयर पर्क्स और एनीथिंग, यू नो, बट दे वर वेरी हैप्पी विथ मी, दे डिड नॉट ग्रम्बल. तो ये ग्रम्बल, एंगर, देन कॉम्पिटिशन, कंपेरिजन, वो सारा भूल गए आते आते. तो मुझे ये महसूस हुआ कि वॉट एवर वी डिड विथ द बीके सिस्टर्स, दैट रियली हेल्प्ड. और कैसे करना है वो शीला दीदी और उषा दीदी ने आज बताया, शीला दीदी भी बताएंगे और किसका है, और एक दीदी का है, वो तीनों सेशंस में ये जरूर आपको पता पड़ेगा कि हाउ यू शुड डू राजयोगा मेडिटेशन डेली टू इम्प्रूव योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली इम्प्रूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज. मैंने भी घर में ये किया, मैं बाद में बात बताती हूँ बिकॉज इट इज गोइंग ऑन अहेड.
थैंक यू शीला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे हम स्टेटस को एक्सेप्ट करके चलते हैं। गुस्सा होना नेचुरल है, फ्रस्ट्रेट होना नेचुरल है, ये सारी चीजें होती है, कॉम्पिटिशन होता ही है, चलता है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप वो चेंज करना चाहें तो आपने वो चेंज आजमा के देखा, कॉमन लोगों के साथ किया। वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, विल कम बैक टू यू फॉर दैट। स्वस्तिका दीदी जी हमारे साथ हैं, आप भी एजुकेशन के फील्ड में जुड़े हैं, जहां गौरजीत जी युवाओं के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ काम करते हैं, आपका फील्ड भी सिमिलर है, स्कूल्स में भी आपकी भागीदारी रही है। आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें।
थैंक यू। नमस्ते, जय स्वामी नारायण, ओम शांति। बेसिकली आई बिलोंग्स फ्रॉम योगी डिवाइन सोसाइटी हरिधाम सोखड़ा, स्वामीनारायण संप्रदाय। साथ में एजुकेशन फील्ड में भी कई वर्षों से सेवा करने का हमें मौका मिला है। लाओत्से की एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, द वन हु नोज अदर्स इज वाइज मैन, हु नोज हिमसेल्फ और हरसेल्फ दैट इज एनलाइटन देम। अगर आप अपने आप को पहचानते हो तो आप अपने आप को प्रकाशित कर ही पाओगे। हम एक ऐसी भूमि पे, दिव्य भूमि पे उपस्थित है जहां से तेजोमय प्रकाश पुंज की ज्योति सारे विश्व में प्रसारित है। राजयोगिनी सरल दीदी जी और शारदा दीदी जी, साथ में गुरजीत दीदी और शीला दीदी और श्रीनित भैया के साथ आज जब विचार विमर्श करने का एक मौका मिला है। नर्सरी से लेकर पीएचडी का अभ्यासक्रम हमारे कैंपस में चलता है तो हम ये बात की सबसे पहले चिंता करते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाए, क्योंकि हमारी भारत देश की भूमि अध्यात्म भूमि है। ऋषि मुनियों ने, हमारे आर्ष दृष्टा पुरुषों ने हमें जो सिखाया है, जो संस्कार हमें दिया है, वो अभी लुप्त होता जा रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली में असमानता। आज हम पारिवारिक सशक्तिकरण के माध्यम में जब उपस्थित है तो सबसे पहले चिंता तो हमें हमारे बच्चों की, परिवार की करनी होगी, जहां से ये संस्कार, ये जीवन मूल्यों को प्रस्थापित करके हम आगे चल पाएंगे। मुझे विनोबा भावे जी का एक छोटा सा प्रसंग शेयर करना अच्छा लगेगा। विनू ने बूम लगाई कि मां मुझे भूख लगी है, तो कौन ऐसी मां होगी जो अपने बेटे की आवाज सुनकर वो उनको खाना नहीं देगी। दौड़ता वो बच्चा वहां पे आया, तब उन्होंने बोला कि पापा को, पिताजी को बोलो ना मेरे लिए मिठाई लेकर आए। उन्होंने, उनकी मां ने बताया, हाँ जरूर से बेटा, पिताजी मिठाई लेकर आएंगे, मुझे खाना खाने के समय मिठाई चाहिए। विनू की ये बात, पिताजी जब वापस आए तो उनके हाथ में एक बड़ा सा बक्सा था। झटपट विनू ने दौड़कर वो बक्सा उठाया और खोलने लगा। जब ओपन करके देखा तो उनकी आंख में आंसू आ गए, वो जोर जोर से रोने लगा। तो उनकी मां ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? तब विनू ने बताया, मैंने तो मिठाई मांगी थी, पुस्तक नहीं मांगा था। तब मां के जो शब्द थे वो बहुत ही विचारशील है। आज की माताएं क्या ये बात समझती है और क्या दे पाती है? उन्होंने बताया कि बेटा आपके लिए ये पुस्तक बाल रामायण, बाल महाभारत है, वो ही सबसे बड़ी मिठाई है आपके लिए। और बाद में धीरे धीरे उन्होंने पुस्तक पढ़ना शुरू किया और विनू में से विनोबा भावे जी बने। और विनोबा भावे जी हर हम में कहते थे कि मेरी माँ ने जो मिठाई खिलाई, मेरे पिताजी ने जो मिठाई खिलाई, उनका स्वाद तो आज भी मेरे मुंह में है। एक कितनी बड़ी बात है। पुस्तक का रीडिंग करना बंद कर दिया है क्योंकि टीवी सीरियल, सोशल मीडिया आ गया है। जब वांछन ही नहीं होता है तो हमारे दिमाग में अच्छी सोच कब आएगी। हम हमारे बच्चों को हमारे आत्मीय कैंपस में सिखाते हैं अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छा कार्य, वही हम सबका काम। चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, या चाहे बुजुर्ग हो, लेकिन अच्छी सोच माइंड में तब आएगी जब हम अच्छी बात पढ़ेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, अच्छी बात देखेंगे। तब तो एक कोई बात बनेगी। परिवार में माँ का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही एक बात और मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने रखना चाहूंगी। शाने गुरुजी, शाने गुरुजी महाराष्ट्र के एक महान लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक रहे। बचपन में उनके घर में एक ऐसा रूल था, खाना खाने से पहले श्लोक संस्कृत के बोले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में कहीं पे खाना खाने के लिए जाना था, मम्मी पापा साथ में, माताजी और पिताजी साथ में नहीं थे। तब वो लाइन में बैठे और श्लोक बोले बिना ही उन्होंने खाना शुरू किया। या और साथ में उनके जो मित्र थे वो घर आकर उनकी माँ को फरियाद करने लगे कि आज श्याम ने श्लोक बोले बिना ही खाना खाया है। तो उनकी माँ को जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला आज तेरे पिताजी आएंगे तो तुझे डांट तो लगेगी। उन्होंने तो लगाई। शाम को अगर पिताजी आए तो उनकी माँ ने बता तो दिया। तो पिताजी की डांट पड़ रही थी और माँ किचन में रसोड़े में बैठकर उनको देख रही थी। शाने गुरुजी ने ये बात जेल में अपनी बायोग्राफी लिखते हुए ये बात लिखी है कि मेरी माँ की नजर और मेरी नजर एक हुई, लेकिन मेरी माँ ने मेरा पक्ष नहीं लिया था। मेरे पिताजी डांट रहे थे और उन्होंने बोला कल फिर से जाकर श्लोक बोल के ही खाना खाना है। क्या ऐसे कोड और कंडक्शन हमारे घर में है? नहीं है। तो फिर अध्यात्म कैसे आएगा? अगर हमें अध्यात्म के साथ चलना है और महिलाओं को एम्पावरमेंट करना है तो आज की लेडी तो बहुत सारे फील्ड कवर कर लिए, लेकिन साथ में ऐसी छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को सिखाए, अपने बच्चों को सिर्फ न पैसा कमाने की दौड़ में लगाए, करियर बनाने की दौड़ में लगना जरूर है, लेकिन साथ में संस्कार के बिना, वैल्यूज के बिना आगे नहीं चल पाएंगे। तो आज मेरा ये निवेदन आपके सामने रखते हुए मैं गौरवान्वित हूं कि यहाँ पे मुझे आकर अपने विचारों को रखने का मौका मिला है। लेकिन व्यक्ति, परिवार, समुदाय से ही राष्ट्र बनता है और राष्ट्र के बेस में हर एक व्यक्ति का चरित्र होता है और वो चरित्र निर्माण हमें साथ मिलकर करना ही होगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्तिका दीदी जी। जिस राष्ट्र के निर्माण में परिवार की भूमिका है, जिस चरित्र के निर्माण की आप बात कर रहे हैं, एक मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं, बहुत ही सादगी से और सरल शब्दों में आपने बता दिया कि कहाँ शुरुआत करनी है। आज हमारे साथ आदरणीय सरला दीदी जी हैं। मैं दीदी जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वे अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें।
ओम शांति। बहुत सुंदर विषय पर हमारे अनुभवी पैनलिस्ट जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, सभी के अंदर से एक आवाज निकला कि सशक्तिकरण के लिए आध्यात्म की आवश्यकता है और वैल्यूज हमारे पास हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि महिला ये विश्व की वो सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसके अंदर परमात्मा के जितने भी गुण हैं वो सभी गुण विद्यमान हैं। शायद इसीलिए परमात्मा की जो महिमा गाते हैं उसमें गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, सबसे पहले मां के स्वरूप में याद किया। तो वो सभी गुण चाहे दयावान, क्षमावान, भाववान, दयालु, कृपालु, जो भी कहो, वो मां के मातृत्व में छिपे हुए हैं। गुण है, आवश्यकता है आध्यात्म ज्ञान के द्वारा उनको सशक्त करने की। ज्ञान के अभाव में गुण भी दुख का कारण बनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। एक गांव था, लास्ट बस थी, सभी उस बस के अंदर चढ़े। एक गांव वाला था और ये लास्ट बस थी, उसके बाद कोई बस नहीं थी। उसने जाकर के ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि बस में बिल्कुल जगह नहीं थी, कंडक्टर ने ना बोल दिया। तो ड्राइवर को उसके ऊपर दया आई और उसने अपने साइड से बाजू में उस गांव वाले को बिठा दिया। बस चल पड़ी, देखा उसने वो बैठा रहा। आधे रास्ते पर जाकर के बस खड़ी हुई, चाय पानी के लिए लोग नीचे उतरे, फिर सब वापस बस में चढ़े। जब बस में चढ़े तो ड्राइवर ने देखा कि बस का गियर नहीं है। वो देखने लगा तो वो जो भाई गांव वाला बैठा था किसान, उसने दोनों हाथ जोड़ करके उसको कहा, साहेब मैं कब से देख रहा था आप बार बार इस डंडे को पीछे करते हो और ये डंडा आगे आ जाता है, इसलिए मैंने निकाल करके देखो वो रख दिया ऊपर। दया धर्म का मूल है, मूल गुण उसके अंदर था, लेकिन ज्ञान का अभाव था। परिणाम ये निकला, सभी बस के पैसेंजर्स को तकलीफ उठानी पड़ी क्योंकि बस चल नहीं सकती थी। ठीक इसी प्रकार से महिलाओं के अंदर अनंत शक्ति है, सिर्फ आध्यात्म ज्ञान से उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता है। और परमात्मा पिता ने भी यदि विश्व परिवर्तन के लिए किसी को पसंद किया, और कोई विश्व परिवर्तन कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नारी ही कर सकती है। जब उन गुणों का विकास होता है, हमारी अंतर चेतना जागृत होती है, जिस चेतना से जो अभी आपने कहा कि मैं कौन हूं, इसे हमें समझना है। यही आध्यात्म सिखाता है, आप नारी नहीं, आप अबला नहीं, आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। और जब हमें ये रियलाइज होता है कि मैं वो शक्ति हूं, ऑटोमेटिक आत्मा के अंतर्निहित जो गुण है वो हमारे नेचर में, व्यवहार में आते हैं। उसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। आपके जीवन में परिवर्तन है, आपके बच्चों पर, पति पर, सारे परिवार का वातावरण आप चेंज कर सकते हो। हम सोचते हैं हमें अपने बच्चों को आदर्श बनाना है, हमें अपने परिवार को आगे बनाना है, समाज को बनाना है, लेकिन यहां पर परमात्मा पिता ने हम सबको पढ़ाया है, बच्चे
तुम अपने को बदलो, संसार बदल जाएगा। और वो मेडिटेशन के आधार से हमारे में चेंज आता है, जिस चेंज से हमारा ऑरा बनता है। आज इस देश में महिलाओं ने बहुत प्रगति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। प्रगति के पश्चात क्या हम आप सब अपने दिल पर हाथ रख करके ये कह सकते हैं कि नारी सुरक्षित है? कह सकते हैं? जवाब नहीं है, नहीं कह सकते। क्यों? उसका एक ही कारण है, आध्यात्म की कमी। जब आपका ये और अच्छा बन जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी तरफ ऐसे देख सके। वो ताकत मेडिटेशन से, राजयोग से हमें क्रिएट करनी है। और जो मूल्यनिष्ठ समाज है, उसकी स्थापना में राजयोग का, आध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। और उसको हमें और आपको मिलकर के पूरा करना है। मैं ये आशा रखूंगी कि आप सभी महिलाएं जो एक शिव शक्तियां हैं, 3 दिन में यहां से ये एक आध्यात्मिक शक्ति की चेतना को जगा करके जाएंगी, जिससे आप परिवार, समाज, देश और राष्ट्र के लिए एक एग्जाम्पल बन सके। ऐसी श्रेष्ठ शुभ भावनाओं और मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सरला दीदी जी का। एक बहुत ही मजेदार बात आपने कही है, ज्ञान के अभाव में गुण भी दुख देता है। शायद अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जिसे हम में से बहुत सारे लोग अभी भी इसे डाइजेस्ट करने में लगे हुए होंगे, क्योंकि हमें तो यही समझ में आया है आज तक कि हाँ, गुणवान व्यक्ति हो, गुण हो तो काफी है। कभी कभार धन ना भी हो तो भी गुण होने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ये जो गुण हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, जो ज्ञान की बात कही जा रही है, आखिर वो कहाँ है? आज हम देखते हैं कि हमारे पास दो बड़े एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, दो एजुकेशन के फील्ड के दिग्गज हैं। और जैसे स्वस्तिका दीदी जी कह रहे थे कि नर्सरी से लेके पीएचडी तक की पढ़ाई हमारे पास हो रही है, आज एजुकेशन के, ज्ञान के अनगिनत आयाम खुले हैं, हम जितना चाहिए उतना पढ़ सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि ज्ञान का सोर्स तो हमें पता है कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मूल्यों का स्रोत क्या है? आज हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे गुणवान बने, उनके अंदर अच्छे वैल्यूज आए, प्रयास भी कर रहे हैं, मगर उसका स्रोत क्या है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, गुण उत्पन्न कहाँ से होते हैं? शारदा दीदी जी,
बहुत सुंदर प्रश्न किया। नॉलेज का अभाव और वैल्यूज का स्रोत क्या है? जैसे कि नॉलेज के अभाव में वो दया भी दुखदायी बन गई, और किस प्रकार से जाने अनजाने में हमारे एक्शंस जो बेस्ट टीचर्स हैं, आई थिंक एजुकेशन हमें वैल्यूज नहीं सिखाती है, अतिशयोक्ति है। हिस्ट्री सुनाएगी, ज्योग्राफी बताएगी, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की वैल्यूज, क्योंकि मैं भी एक समय पर टीचिंग में रही हूं, वैल्यूज हमारे एक्शन सिखाते हैं। एक सिंपल बात सुनाती हूँ, हंसी की बात है, छोटे बच्चे की बात है, कितना इनोसेंट है। पहले तो घर में लैंडलाइन्स हुआ करते थे, फोन आता है, बच्चे ने फोन उठाया, सामने से आवाज आती है, अपने डैडी को दो। बच्चा डैडी को कहता है, डैडी आपका फोन है। डैडी बिजी थे, बच्चे को कहा, कह दो बेटा मैं घर पर नहीं हूं। बच्चा फोन पर कहता है, डैडी कह रहे हैं मैं घर पर नहीं हूं. What I taught him. मेरा मॉरल राइट खत्म हो गया. बेटा झूठ नहीं बोलते हैं. स्पिरिचुअलिटी जिसमें तीन आई है. टू आईज हम सभी के पास है. स्पिरिचुअलिटी हमें थर्ड आई ऑफ विजडम देती है. थर्ड आई ऑफ नॉलेज देती है. लेकिन सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती है. उस नॉलेज को कहा जाता है नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट. नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग. स्पिरिचुअल नॉलेज हमें बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग यहां तक देती है जो हमारे मन और बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं. हमें नॉलेज है झूठ बोलना बुरा है. नॉलेज है क्रोध नहीं करना चाहिए. नॉलेज है मुझे हिंसा नहीं करना चाहिए. मुझे हत्या नहीं करनी चाहिए. मुझे ये नहीं करना चाहिए. नॉलेज है बट चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते हैं. कौन सी मजबूरी है. महाभारत की द्रौपदी चीरहरण हो रहा है. उसके पांच पांच पति बैठे हैं. भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बड़े बड़ी महान विभूतियां बैठी हैं सो कॉल्ड स्टोरी में. एक भी हेल्प करने आया. एक को भी हिम्मत हुई कि हमारी बहू बेटी की लाज लूट रही है तो हम आकर के उसको बचाएं. किसी में भी मॉरलिटी कहूं एथिक्स कहूं नहीं है. आज हमारे सामने एक बर्निंग प्रॉब्लम मणिपुर है. एक्शन हुआ. क्या आप उसको कायदे से सुधार सकते हैं. नहीं. मिसिंग लिंक इज स्पिरिचुअलिटी रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग. और उसका रूट क्या है. उस रूट में मुझे जाने की आवश्यकता है. इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हमें जड़ से वैल्यूज सिखलाई जाती हैं, समझ दी जाती है. शेरनी की रक्षा शेर नहीं करता है. वो सेल्फ प्रोटेक्टेड है. हमें आज किसी की भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है. नहीं है. नहीं है. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स. आखिर द्रौपदी की रक्षा किसने की. किसने की. श्री कृष्ण ने. तो हमारे साथ जब गॉड ऑलमाइटी है तो हमें डरने की क्या बात है. फियर मीन्स बॉडी कॉन्शियस. एंड बॉडी कॉन्शियस मीन्स काम क्रोध लोभ मोह अहंकार. आज काम वासनाएं यही उसके सारे मूल वैल्यूज को खत्म कर रहा है. उसकी दृष्टि वृत्ति उसको दूषित बना रही है. आज हम अपने आप को देखें. हमारे घर की बहू बेटियां कौन से आउटफिट्स पहनती हैं. हम क्या पहनते हैं. तो ना चाहते हुए भी दूसरे की बुरी नजर पड़ेगी ही पड़ेगी. हम उनको इनवाइट कर रहे हैं. एक नारी एक सबला जिसकी नवरात्रि के अंदर कुमारियों की पूजा करते हैं. देवी के रूप में उसको माना. मां के रूप में माना. बेटी के रूप में माना. बहन के रूप में माना. आज वो दृष्टि समाज में है. हम किसको सुधारना चाहते हैं. कानून की दृष्टि से सुधारना चाहते हैं. कानून बना करके सुधारना चाहते हैं. निर्भया कांड हुआ. बहुत से कायदे बना दिए गए. उसके बाद क्या हुआ. वो रुका या दिन दोना रात चौगनी वो बढ़ गया. चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, और उस सेल्फ अवेयरनेस के लिए नॉलेज चाहिए ट्रू सेल्फ की, और वो ट्रू सेल्फ दैट आई द सोल इज पीसफुल, आई द सोल इज लवफुल, आई द सोल इज पावरफुल, आई द सोल इज प्योर, आई द सोल इज ब्लिसफुल, आई द सोल इज हैप्पी। ये नॉलेज हमें एम्पावर करती है, और उस लक्ष्मण रेखा में मैं हूं तो कोई भी आसुरी वृत्ति वाला रावण मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता है।
बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात। जितना ये एक आध्यात्मिक परिपेक्ष है, उसके साथ साथ ये आज के वर्तमान की समस्याओं का सॉल्यूशन भी है। दीदी जी, जो आप बात अभी कह रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों को अभी एहसास हो रहा होगा कि हाँ, कहीं अंदर झांकने की जरूरत है। ये कानून बनाने से सीधा होने वाला समस्या नहीं है, इसे सुलझाया नहीं जा सकता, ये परिवर्तन अंदर से शुरू होना चाहिए। मातृशक्ति के बारे में हम सभी बात करते आए हैं, और अभी सरला दीदी जी भी ये बात कह रहे थे कि कैसे एक माँ के पीछे बहुत कुछ निर्भर करता है। स्वस्तिका दीदी ने कहा कि कैसे एक माँ की शिक्षाएं समाज में एक बालक को या बालिका को मूर्त रूप देती हैं। शारदा दीदी जी कह रहे थे कि ये जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्वयं की वास्तविक पहचान इम्पॉर्टेंट है। मदालसा की कहानी में ये चीज आती है कि मदालसा अपने नवजात शिशु को रोने से रोकने के लिए एक बहुत ही आध्यात्मिक लोरी गाती है। हम सभी जानते हैं, एक छोटा सा शिशु आध्यात्म की कौन सी बात समझ सकता है? आध्यात्म तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं समझ पाते, ऐसा हम कहते आए हैं। मगर मदालसा एक माँ होने के नाते अपने नवजात शिशु के लिए गीत गाती है, लोरी गाती है। शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्जितो सी। वो उस बालक को गोद में ही ये शिक्षा दे रही है कि तुम शुद्ध हो, आई एम प्योर, जो बात दीदी कह रहे थे कि तुम ऑलरेडी वाइज हो, तुम ये जो आवरण है संसार के वो तुम नहीं हो, किस बात के लिए तुम रोते हो? ये जो शिक्षा है, ये जो स्वयं की पहचान है, ये अवेयरनेस है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ये आपने हमें बताया। मैं डॉक्टर गौरजीत जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या एक सेल्फ अवेयरनेस एक की तरह काम करता है वैल्यू सिस्टम्स को इंस्टॉल करने में, वैल्यू बेस्ड लाइफ को बिल्ड करने में?
सेल्फ अवेयरनेस और जो इनर ग्रोथ जो दीदी ने अभी बताया, बहुत जरूरी है, और ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, जब हम अपने को जान लेते हैं, हमारी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है, हमें पता रहता है कि क्या गलत है और क्या सही है, हमें पता है कि हमें कितने आगे जाना है और कहां अपने को स्टॉप करना है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और जब सेल्फ अवेयरनेस आएगी तो मैं यहां पर जितनी भी बहनें बैठी हैं उन सबको ये कहना चाहूंगी, जैसे हम सब परिवार से बंधे हुए हैं, हम सब परिवार के सदस्य हैं, और हर परिवार में कोई ना कोई समस्या होती है, कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। पर अगर हमारे में सेल्फ अवेयरनेस है तो हम उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को, उन सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, हम कोप अप कर सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ी सी सूझबूझ की जरूरत होती है, और जहां पे सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है वहां पर मैं आपसे ये बात साझा करने चाहूंगी कि वहां पर मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, और वहां पे घर परिवार टूटने शुरू हो जाते हैं, वहां पर बच्चे हमसे दूर जाना शुरू कर देते हैं। और जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है तो हम मुश्किल जो है ना हमारी बढ़ जाती है। पर मुश्किल तो ये है कि हम हर मुश्किल को मुश्किल मान लेते हैं, पर मुश्किल कुछ भी नहीं होता। तो हमें अपनी जिंदगी में अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस कैसे आएगी? चेतना से, स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से। बार बार सुबह से कल से हम ये सुनते आ रहे हैं और अब जब कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चेंज है, एक हैप्पीनेस इंडेक्स कहीं ना कहीं बनता जा रहा है हमारे माइंड में जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। और सुबह जब रेनू दीदी बात कर रही थी, हम सब बैठे थे और उन्होंने एक बात कही, शायद आप सबने भी सुनी होगी, कि शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ये कोई छोटी बात नहीं है, यू नो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। बट क्या आपने उनके चेहरे पर या उनके व्यवहार में ये चीज देखी कि शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर? शी हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट डेफिनेटली उनका एक गोल है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, एक चेतना के साथ, एक अवेयरनेस के साथ वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं और शायद इसी वजह से उनको वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोप अप कर पा रही हैं। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी पॉजिटिविटी के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। एक महिला होती है और वो डॉक्टर के पास जाती हैं अपने नॉर्मल रूटीन के लिए, जैसे हम लोग जाते हैं आफ्टर 40s 50s हम मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं और ये एडवाइजेबल भी है कि हमें अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। तो जब महिला जाती हैं तो डॉक्टर सारे चेकअप करते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आप मैम आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम दी लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। तो महिला घर जाती हैं, अपने बच्चों के साथ बात करती हैं, पति के साथ बात करती हैं। नेक्स्ट डे उनको डॉक्टर ने फिर बुलाया होता है कि आप फिर से आइएगा, थोड़ा से और टेस्ट कर दें, थोड़े से और चेकअप कर दें। वो जाती हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाती हैं और लेकर जाती हैं अपने साथ स्वीट्स, मिठाई का डिब्बा लेके जाती हैं। तो डॉक्टर बड़ा हैरान कि मैंने तो इनको कहा कि ये 6 महीने तक ही सिर्फ सर्वाइव कर पाएंगी और ये मेरे लिए मिठाई लेकर आई हैं। तो डॉक्टर साहब वो ऑफर करती हैं कि डॉक्टर साहब मिठाई लीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बहन मैंने आपको कहा कि आप 6 महीने जिंदा रहेंगे, आपकी लाइफ सिर्फ 6 महीने की है, तो आप क्यों मुझे मिठाई खिला रहे हैं? तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ कितनी है, आप कितने दिन जिंदा रहेंगे? तो डॉक्टर कहते हैं कि ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हम दूसरे क्षण कब परमात्मा हमारे को कॉल दे दे और हमें जाना पड़ जाए। तो वो कहती हैं इसीलिए एटलीस्ट आपने मुझे तो गारंटी दी है कि मैं 6 महीने जिंदा रहूंगी, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आप सब से ये कहना चाहूंगी कि हम सब में बहुत पोटेंशियल है, हम सब में कोई ना कोई कैपेबिलिटी, नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, हर कुछ है, बस सिर्फ जरूरत है उनको अपने व्यक्तित्व में लाने की और अपने परिवार तक पहुंचाने की एक पॉजिटिव नोट के साथ। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद गौरजीत जी। डॉक्टर गौरजीत ने बहुत अच्छी बात हमें समझाई कि हम सिर्फ ये नहीं सोचें कि हम समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ सॉल्यूशंस भी ऑफर कर रहे हैं। हमारे हर एक पैनलिस्ट ये आपको दिखा रहे हैं कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ हमारी पॉसिबिलिटीज है। श्रीमती शीला जी हमारे साथ हैं, आप महिला संगठनों के साथ काम करते रहे हैं, उन्हें एम्पावर करती रही हैं, शिक्षा को एक अस्त्र के रूप में आपके ऑर्गेनाइजेशन ने यूज किया है। अभी जो गौरजीत जी बात कह रहे थे कि अभी वो पॉजिटिविटी हमें लानी है, आज हम महिलाओं को सशक्त करने की जो बात कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस की, जो आध्यात्मिक चेतना की बात आप कर रहे हैं अभी, तो क्या आप देखते हैं कि ये चीजें एक्शन में ट्रांसलेट की जा सकती हैं? क्योंकि वर्क लेवल पे जहां लोगों के साथ काम करते हैं, आप थोड़ा एग्जांपल तो शेयर कर ही रहे थे क्योंकि आपने देखा है, तो ये कितने आसानी से ट्रांसलेट होती हैं एक्शन में कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है बट ये वर्क भी करता है।
जी बिल्कुल सही है आपने कहा, सही है, एक्शन में ला सकते हैं और ये हमने लाया है। हम ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस ब्रांचेस को प्रोग्राम्स देते हैं अलग अलग. इतने सालों में हम एजुकेशन के अवेयर एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स देते आ रहे हैं. हमने निकलने से पहले वहां से एज ऑन द फ्रॉम द पोस्ट हमने स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है इसमें ब्रांचेस के लिए और उनको गाइडेंस दिया है कि आपके यहाँ कोई भी संस्था हो. सारे देश भर में पहले अनेक संस्था है. कोई किसी से कौन से संस्था से जुड़े हुए होंगे कोई ब्रांच किसी और दूसरे से बट यू ब्रिंग इन दैट स्पिरिचुअलिटी का एक अंश लाइए लेक्चर्स रखिए और महिलाओं को इसके बारे में जानकारी दे दीजिए. तो ये क्योंकि हम एडोलेसेंट के लिए भी ये प्रोग्राम करते थे 5-5 दिन का प्रोग्राम फॉर देयर इम्प्रूवमेंट एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए. तो अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मैं आप सबसे सबके साथ भी बोलना चाहूंगी कि मैं रोज मुरली सुनती हूँ. बाबा की मुरली जो है बहुत अच्छे और साफ सुथरे और इजी शब्दों में बताया गया है उसमें हाउ यू शुड बिहेव. आपने कैसे उसका आपके लाइफ में चेंज लाना है और जब आप अपने लाइफ में चेंज लाओगे तो नेचुरली फैमिली में भी आएगा चेंज और आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं आपके अड़ोस पड़ोस में फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स में उनमें जरूर महसूस होता है कि ये कैसे इस मेरा खुद का शीला इतनी तापड़ दोकेची यू नो एंग्री वुमन थी वो कैसे बदल गई ये कैसे हो गया. तो ऐसे चेंज एवरीबडी नोटिसेस और ये मैं धीरे धीरे ऑन आवर लेवल यू नो आई एम स्टेइंग इन अ फैमिली. फैमिली से मैं समर्पित तो नहीं हूं मैं पर मैं सारे जो धारणाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने में लाने की कोशिश कर रही हूं. बाबा का मुझे बहुत साथ है. आई एम डूइंग इट एंड आई एम वेरी हैप्पी. पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और ये इसके लिए हम जरूर काम कर रहे हैं संस्था की ओर से. तो देश भर में इसको लाने का हमारा ये है.
बहुत अच्छा. थैंक यू शीला काकरे मैम. यानी ये बात तो सिद्ध है कि ऐसा नहीं कि भाई बचपन में ही काम करना चाहिए था. अब बहुत देर हो गई. अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं. अब तो पेड़ बड़ा हो गया. अब ये झुक नहीं सकता. ऐसा नहीं है. अध्यात्म वो शक्ति देता है कि आप अपने आप को जानने से अपने अंदर वो परिवर्तन ला सकते हैं. खुद को एम्पावर कर सकते हैं और आपके इस एम्पावरमेंट से आपके आसपास उसके वाइब्रेशंस उस चेंज की जो लहर है वो महसूस होती है. लोग ऑब्जर्व करते हैं इंस्पायर होते हैं आपसे मोटिवेट होते हैं. स्वास्तिका दीदी जी जब हम मातृशक्ति की बात करते हैं खासकर बच्चों के लिए और युवाओं के लिए आने वाली पीढ़ी की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि माएं सुधार सकती हैं. माँ चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है. स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही सुंदर उक्ति को देके गए हैं. वो कहते हैं कि जो हाथ पालने में बच्चों को झुला सकती है वही हाथ इस पूरे संसार को भी झुला सकता है. यानी इस संसार को दिशा देने का भी काम वही मातृशक्ति कर सकती है. आप क्या देखते हैं कि महिलाएं या मातृशक्ति नारी शक्ति कैसे समाज को एक मूल्यनिष्ठ समाज में परिवर्तन की दिशा में योगदान दे सकती हैं?
एक माँ 100 शिक्षक के बराबर होती है ये एक उक्ति हम सब जानते हैं. मैंने हमारे कैंपस में एक बात इस साल से ही प्रचलित की माँ मुझे पहचानो ऐसा करके एक हमने सर्टिफिकेट कोर्स दाखिल किया 2 मंथ के लिए. 35 मदर्स ने ये बात को लेकर अभी 5 दिन हुआ है 1 अगस्त से ही हमने शुरू किया लेकिन बहुत ही एंजॉय कर रही है. उनको हमने सिखाया कि सबसे पहले मनुस्मृति में एक बात लिखी गई है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से ही संस्कार उनमें आना शुरुआत हो जाती है। तो गर्भ संस्कार की बात से लेकर 14 साल तक हम जितना कुछ डालना चाहते हैं वो उनमें हम डाल पाएंगे। बाद में हमें उनके मित्र बनकर चलना होगा। बाद में जो भी हम फैसिलिटीज देंगे तो विवेक अविवेक का उनका पता चलेगा, मुझे कैसी जिम्मेदारी से चलना है, कितना यूज सोशल मीडिया का करना है नहीं करना है, वो सभी बातें तब उनको पता चलेगी। इसीलिए हमने कार्य शुरू किया कि हैप्पीनेस क्यूरिकुलम एक दाखिल किया, जिनमें हर रोज हम एक दीदी जी ने जैसे स्टोरी बताई और मेरे कलीग ने भी बताई, वैसे ही एक स्टोरी के माध्यम से हम उनमें ए वैल्यूज प्रस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में वही स्टोरी मम्मा को भी हम भेजते हैं और वहां मम्मी भी उनकी ये स्टोरी पढ़कर उनके बच्चों के साथ शेयर करते हैं, जैसे मम्मी के विचार क्या है और बच्चों के विचार क्या है, तो दोनों साथ मिलेंगे। दूसरी एक बात मेरी सोच में आती है कि हमारा आचरण ही बच्चों के लिए एक आदर्श रूप बन सकता है। आज माँ ही घर में ऊंची आवाज में बोलती है तो बच्चा बोलेगा ही, तो हम वो सिखाने का प्रयास हमारे कैंपस में कर रहे हैं कि माँ को अपने आप को वैल्यूज के साथ चलने के लिए उनके पास है ही। हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी ऑलवेज कहते थे कि हमारे आत्मा में 100 करोड़ सूर्य की शक्ति है। विवेकानंद जी ने तो 13% ही यूज की थी, फिर भी उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। तो अगर हम माने कि मेरा आत्मा इतना बलिष्ठ है, मेरे आत्मा के पास इतनी सारी शक्ति है, तो वही रियलाइज हमें मदर्स को करवानी है कि आपके पास बहुत कुछ है, सिर्फ आप अपने बच्चों को पहचानो। भगवान ने उनको भी बहुत ढेर सारी अमाप शक्ति दी है, सिर्फ उनका रिलेशन अच्छी तरह से बने वो जरूरी है। तो हमने सॉन्ग के माध्यम से भी, मुझे गाना नहीं आता है वरना मैं गा के सुनाती, कि कहां से शुरुआत की है, चाहे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश या फिर मैथ साइंस या सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, लेकिन नर्सरी से हमने शुरुआत की है। माताजी बोलू या पिताजी बोलू, ये है अच्छी बात अच्छी बात, ये पूरा एक सॉन्ग है। एक्शन के साथ बच्चे बोलते हैं और घर जाकर उनकी मम्मी को मम्मी जी बोलते हैं, पिता को पिता जी बोलते हैं। ये सिंपल सा एक विवेक है लेकिन बहुत जरूरी है, जो हम यहाँ पे दीदी जी में ये विवेक देख रहे हैं। और हमारी संस्थान में भी स्वामीनारायण संप्रदाय में साध्वी जी है, जिनके साथ रहते हुए हमें भी कैसा आचरण करना चाहिए। और हमारी बड़ी दीदी है प्रेम दीदी जी, तो उनको देख देख कर ही हम सीखे हैं। हमारे में भी वो दोष सुबह बताया था फर्स्ट सेशन में कि हमारे अंदर भी हठमा निर्षा या काम क्रोध लोभ है, लेकिन जब हम अपने गुरु को देखते हैं, जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे क्योंकि सब में से उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा तो लिया ही सही। तो जैसे ब्रह्मा कुमारी इतनी बड़ी संस्था है तो उनके कार्यरत जो बहन लोग है, तो हम राजकोट में गीता दीदी और अंजू दीदी के साथ है, तो हम उनको देखते हैं कि उनकी वाणी में कितनी मिठास है, तो वो मिठास सुनती हूँ मैं देखती हूँ तो मेरे आचरण में जरूर आएगी। तो मुझे लगता है कि आचरण ही सबसे बड़ी बात है कि उनके माध्यम से हम अपने आप में हमारे आत्मा को बलिष्ठ बना सकते हैं। जैसे हमारी प्रेम दीदी की एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी। एक बार कोई गेस्ट आए हमारे आश्रम में, तो उनको वॉशरूम जाना था और हमारी दीदी वहां पे खड़ी थी, तो उन्होंने अपना पर्स तुरंत ही हमारी बड़ी दीदी को दे दिया। तो हमारी दीदी ने वो पर्स तुरंत ले लिया और वो मेहमान ने बताया कि आप पकड़ के रखो, हम आते हैं अभी। तो ये बात मैंने देखी सुनी तो मुझे कभी अपना सिर ऊंचा करने का मन कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने मेरे आदर्श व्यक्तित्व में मैंने अपने दीदी को रखा है। तो वैसे यहाँ पे आकर भी हमने बहुत अच्छी तरह से दो दिन में सिंप्लिसिटी देखी और थिंकिंग में जो कितनी हाइट से चल रहे हैं, तो ये सभी बातें तभी बन सकती है कि जब हम एक दूसरे से अच्छी बात सीखे और हमारे आचरण में लाए। तीसरी बात कहना चाहूंगी कि सकारात्मक सोच, कहीं पे भी हम जाते हैं तो अपनी पॉजिटिविटी को साथ में लेकर चले, तो ये बात जरूर से सेल्फ अवेयरनेस की बात हो या फिर वैल्यूज को डेवलपमेंट करने की बात हो या मदर्स को एम्पावरमेंट करने की बात हो, तो ये तीन चीजें साथ में लेकर अगर हम चले तो मुझे लगता है कि एक सिर्फ विमेंस ही नहीं पूरा समाज में बदलाव आ सकता है।
बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। आज हम सभी बदलाव चाहते हैं, सिर्फ अपने बच्चों में नहीं, खासकर हम चाहते तो हैं कि उनको एक अच्छा भविष्य मिले, मगर जब आप ये बात कहते हैं कि अगर हमारे आचरण से वो सीखते हैं तो पहले हमें बदलना होगा, तो वो बदल सकते हैं। साथियों, हमारे पास लगभग पौना घंटा और है, सो अगर आप पैनल से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप एक कागज पे प्रश्न लिख दें और वो प्रश्न हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको आप दे सकते हैं, तो वो प्रश्न मेरे तक पास ऑन कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने ब्रीफली मैं इन क्वेश्चंस को ब्रीफ आंसर्स में और ज्यादा क्वेश्चंस को ले सकूं, वो प्रयास में करूंगा। मैं आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से सरला दीदी जी के लिए लेकर आया हूं। दीदी, सभी पैनलिस्ट ने ये बात तो कही कि अपनी सही पहचान, सेल्फ अवेयरनेस, आध्यात्म की आवश्यकता, पॉजिटिविटी की जरूरत, खुद एक रोल मॉडल बनकर चेंज को इंस्पायर करना, मैं बदलूंगा तो सामने वाले बदल सकता है, उसकी ताकत को सभी पैनलिस्ट ने बताया, वो कितना प्रैक्टिकल है वो भी बताया कि ये संभव है ये भी बताया। आज जब हम स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ऑडियंस में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहे कि नहीं, मैं एम्पावर नहीं होना चाहता। अगर मैं पूछूं तो सबके सब हाथ खड़ा करेंगे कि हाँ, हम सब एम्पावर्ड होना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम चेंज मेकर्स बने, हम चाहते हैं कि हम लोगों को इंस्पायर करें, हमें देखकर लोग बदलें, हम सभी चाहते हैं, बट वो एम्पावरमेंट होगी कैसे वो बताएं।
बहुत सुंदर और जरूरी प्रश्न है, क्योंकि ये बात हम सबके सामने स्पष्ट हो गई जो इन्होंने कहा कि सभी पैनलिस्ट इस बात को मानते हैं और आप सब हमें मानते हैं कि इसकी आवश्यकता है और हमारे में है। उसके लिए जरूरत है दृढ़ता की। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। कई चीजों को हम महसूस करते हैं कि मुझे ये करना है, ये मेरे में नहीं होना चाहिए, लेकिन दृढ़ता की कमी होने के कारण हम फिर से उस कमजोर संस्कार के वश हो जाते हैं। तो एक दृढ़ता को अपनाएं और साथ ही साथ हम इस चीज को यहां से महसूस करके जाएं जो अभी हमारी वाणी में है, चर्चा में है, कि महिला के अंदर बहुत बड़ी शक्ति समाई हुई है। उस शक्ति को हम महसूस करें। जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब परमपिता परमात्मा ने हम सबको ये एक महामंत्र दिया कि तुम एक आत्मा चैतन्य शक्ति हो। केवल बाबा ने मंत्र नहीं दिया, लेकिन उस शक्ति को, उस मंत्र को, संकल्प को मनन करते करते स्वरूप बनाया। संकल्प को स्वरूप में लाने की जरूरत है और जब स्वरूप में आएगा तब ऑटोमेटिक उसका प्रभाव सारे समाज पर पड़ेगा। पॉजिटिविटी के साथ दूसरी एक शक्ति है, वो है प्यूरिटी, पवित्रता। मन की
वचन की और कर्म की। पवित्रता में वो ताकत है जो पहाड़ को भी हिला सकती है, और हमारे इस देश की नारियों के अंदर वो शक्ति थी, मैं थी कह रही हूं, वो शक्ति थी जिसने भगवान को झुका दिया। अनसुईया माता तीनों देवताओं को बच्चा बना दिया, ताकत थी पवित्रता की। आज हम उनका नाम लेकर के गौरव ले रहे हैं, लेकिन इस विद्यालय में परमात्मा पिता ने हमें वो रियलाइज करा करके पवित्रता की देवी बनाया। तो आवश्यकता है, आप सब भी बहुत अच्छे विचार आपने भी रखे और कहा कि ये सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, सिर्फ एडिशन करूंगी, प्यूरिटी को हम अपनाएं, हमारे विचारों के अंदर इतनी पवित्रता हो। विचार की पवित्रता का मतलब है कोई भी इविल कमजोरी मेरे संकल्प को चेंज ना कर सके। संकल्प शक्ति है, सबसे महान शक्ति जो हमारे में है। तो हम अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा, प्यूरिटी के द्वारा, बोल में पवित्रता, मधुर बोलें, कम बोलें, आवश्यकता अनुसार बोलें, वो हमारे बोल की पवित्रता है। व्यवहार में शुद्धि हो, वो हमारी पवित्रता है। ऐसे पवित्रता की शक्ति को बढ़ा करके हम उन सभी सिद्धियों को जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं हासिल कर सकते हैं। बच्चे भी सुधरेंगे, परिवार में भी सुख शांति आएगी, क्योंकि आप सब ने भी कहा कि जब तक हम सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तब तक हम चेंज नहीं ला सकते हैं। तो खुद का परिवर्तन वो विश्व का परिवर्तन होगा। बच्चे हो, परिवार हो, समाज हो, आप सब के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। और हमारी शीला बहन ने भी कि हम ऐसा करते हैं तो दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ता ही है, ऐसे इस विद्यालय के पास लाखों एग्जाम्पल हैं। मैं एक छोटा सा भाई अपने हैं जिन्हों के अंदर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपने परिवार में एक ही उनके पीढ़ी में बेटा चला आया है, बहुत ईगो था, मैं कुछ हूं। कहा कि रोज फैक्ट्री में हड़ताल होती थी, कारण क्या था? ईगो। और उस ईगो के कारण उनकी फैक्ट्री में एक बार छोटा सा इंसिडेंट बना, जो लिफ्ट मैन था उस लिफ्ट मैन ने लिफ्ट का दरवाजा नहीं खोला, इनको बड़ा ईगो हर्ट हुआ, मैं आया और दरवाजा नहीं खुला, इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद वो कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद में वो जीत गया। उसने कहा कि मेरी जो ड्यूटी है, मैं वॉचमैन हूं, लिफ्ट का दरवाजा खोलना वो मेरी ड्यूटी नहीं थी, तो मैंने अपनी ड्यूटी बजाई, मैंने ड्यूटी को नहीं छोड़ा। अब वो भाई कहता जब जीत गया फिर से वहां अपनी ड्यूटी पर आया, ये जब पहुंचे गाड़ी से उतरे, उसने उसका दरवाजा खोल करके मूछ पर ऐसे ताव फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। किस चीज ने? इस ईगो इम्प्यूरिटी ने उसको डाउन किया। यही भाई ने अनुभव सुनाया, मुझे ब्रह्मा कुमारीज मिली और मैं माउंट आबू शिविर करके गया, आज उनकी ये कंडीशन है। कहते हैं मैं जब अपनी फैक्ट्री में जाता हूं हर वर्कर को सामने से बुलाकर बोलता हूं, ओम शांति, कैसे हो, ठीक हो। जिस फैक्ट्री में हर रोज थोड़ा समय के बाद स्ट्राइक होती थी, आज उस फैक्ट्री के अंदर इतना अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर हो गया है, और वो भी कहते हैं ये हमारा परिवार है, ये है हमारी प्यूरिटी की, पॉजिटिव थॉट्स की इफेक्ट। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं, मेरे पास जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के संख्या को देख के बहुत खुश हो रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग जगे हुए हैं। और ये इस बात की भी खुशी दिलाता है कि हम सभी प्रबुद्ध जन हैं, हम सब की चेतना जगी हुई है। सिर्फ फिजिकली कॉन्शियसली अवेक होने की बात नहीं है, मगर एक इनर अवेकनिंग है। हम सब प्रज्ञावान होकर चिंतन कर रहे हैं, मंच से जो भी विचार प्रवाहित हो रहे हैं हम उससे ओतप्रोत हो रहे हैं, उनमें से बहुत कुछ हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं, कुछ अपने विचारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि इसे हम कैसे लागू करें। और ये प्रश्नों की संख्या बताता है कि हम एक जेन्यून कंसर्न को लेकर बैठे हैं कि हम वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैं पहले से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सारे प्रश्नों को आने वाले इस आधे पौन घंटे में कवर कर पाऊँ या नहीं, मगर कोशिश जरूर रहेगी कि मैं हम दो तीन प्रश्नों को क्लब करूंगा और हमारे पैनल से उसके उत्तर लूंगा। सर्वप्रथम ये प्रश्न आया है, मैं शारदा दीदी जी से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा। दो प्रश्नों को मैं साथ में क्लब कर रहा हूं दीदी जी। ये प्रश्न है, पारिवारिक सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण में पुरुषों की भूमिका क्या है, क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। ऐसा ही एक सिमिलर प्रश्न है, why the whole responsibility is only on women to bind the families and to teach values to children। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि परिवार को बांधे रखने की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर दी जाती है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मूल्य सिखाए।
गुड क्वेश्चंस। हमारी भारतीय संस्कृति इन प्रश्नों के ही जवाब देती है। धन की देवी कौन है जी? विद्या की देवी कौन है? शक्ति की देवी कौन है? धन कमाने का कार्य किसका है? धन कमाने का कार्य किसका है जी? आज के समय की बात नहीं कर रही हूं। वैसे तो पुरुषों का है। विद्या अधिक कौन पढ़ते हैं? बड़ी बड़ी डिग्रीज अधिक कौन लेते हैं? पुरुष वर्ग। शक्तिशाली फिजिकल दृष्टि से देखा जाए तो कौन है? पुरुष वर्ग। और तीनों की याचना किससे की जा रही है? देवी से। तो देवी अपने आप में सशक्त है, जैसे मंदिर की शोभा मूर्ति से है, घर की शोभा नारी है, माँ है। आज अगर घर की माँ इस दुनिया से चल बसे, उस घर की व्यवस्था कैसी हो जाती है? जैसे कि सब अनाथ, सारा घर अस्त व्यस्त। घर को सुसज्जित सुशोभित करना किसका काम है? किसका काम है? जब नया घर बनाते हैं तो किसको पूछा जाता है, आपको कैसा चाहिए अंदर? हाँ, किससे पूछा जाता है? भाइयों से या बहनों से? फिर आप अपनी जिम्मेवारी से क्यों हट रहे हैं? 9 मास आपने बच्चे को गर्भ में रखा, आपके सोच विचार, आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपका बोलचाल उस बच्चे को प्रभावित कर रहा है। आप जो पढ़ती हैं, जो देखती हैं, जो सुनती हैं, उसका प्रभाव बच्चे पर है। इसलिए कहते हैं माँ ने संस्कार दिए। पिता तो सारा दिन बाहर रहते हैं, तो ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ की है। फादर को शेयर करना चाहिए, और उस शेयरिंग के लिए प्रश्न पूछते हुए मुझे थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा है, क्या आज परिवार परिवार रह गया है? रह गया है? आप महसूस करते हैं? सारा दिन बच्चे स्कूल में, हस्बैंड, सिस्टर, ब्रदर जो भी हैं सब अपने प्रोफेशन में, शाम को आएंगे, चाय पिया, खाने जब तक खाना तैयार हो टीवी के आगे बैठ गए, मोबाइल लेकर के बैठ गए, खाना तैयार हुआ खा लिया सो गए। आपस में बैठ करके थोड़ी भी शेयरिंग की सारे दिन भर की, वो शेयरिंग ही नहीं रही है। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन? मैं कहूंगी मदर, नारी। सबको मिलाने का काम नारी का है। वो परिवार को परिवार बना करके रखे। और जैसे शीला जी कह रही थी, नो एंगर जोन की बात की शिवानी बहन ने, मैं बात करती हूं जैसे ही हस्बैंड, बच्चे, बच्चियां, ब्रदर, सिस्टर घर में एंटर करें डोर से, वहां लिखा हो नो मोबाइल जोन, नो फेसबुक, नो ट्विटर, नो वाईफाई जोन। सब अपने मोबाइल्स वहां ही एक बॉक्स में डाल दें और फिर घर में प्रवेश करें। किससे बात करेंगे, किससे शेयरिंग करेंगे, क्या देखेंगे? आपकी फैमिली बन जाएगी और हार्मनी हो जाएगी।
आप में से कितने लोगों ने इस लव्स को सुना है या नहीं सुना है मैं नहीं जानता। आजकल आईटी सर्कल्स में, पिछले दिनों ज्ञान सरोवर परिसर में आईटी कॉन्फ्रेंस हुआ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स। सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है, हाथ खड़ा करें। यस। और आज इस चेंज को जो अभी शारदा दीदी ने बताया, अगर आपको लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं हो पाएगा हमसे, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन शुरुआत करके देखें। और आईटी कॉन्फ्रेंस में हमारे आईटी के साथी आए, लगभग 300 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे। उन्होंने दो दिन के लिए अपना सेलफोन छुआ नहीं, उन्होंने ईमेल्स चेक नहीं किए, सोशल मीडिया एक्सेस नहीं किया, फोन करके घर वालों को बोल दिया दो दिन मैं फोन पे अवेलेबल नहीं हूं, बहुत इमरजेंसी है, तो ज्ञान सरोवर के लैंडलाइन पे आप फोन करके मैसेज दे सकते हो। और आप विश्वास मानिए, एक इमरजेंसी कॉल भी नहीं आया, एक भी नहीं। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। आज हम समझते बैठे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, अरे ऐसे कैसे चलेगा, अरे नहीं हो पाएगा। हो पाएगा अगर हम लीड लेते हैं तो। अगला प्रश्न है, चार प्रश्नों को मैं क्लब कर रहा हूं, माय अपोलॉजीज। ये चारों प्रश्न बच्चों से रिलेटेड हैं। पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को लाइफ स्किल सिखाएं, वैल्यूज सिखाएं। लोग ये भी पूछते हैं फिर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या हमें इसे स्कूल के करिकुलम में इनकलकेट कर देना चाहिए या इसका सिलेबस बनना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकली बच्चों को ये चीज सिखाना चाहते हैं, उन्हें ट्रेन करना चाहते हैं, सिंगुलरली मदर तो नहीं कर सकते, सिर्फ फादर भी नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे करें कि बच्चों में स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हो, स्पिरिचुअल एजुकेशन मिले उनको, और वो इमोशनली प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे समस्याओं को डील करने वाले केपेबल बच्चे बने। मैं समझता हूँ गौरजीत जी आप अपने कुछ विचार रखें इस पर।
बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसका सोल्यूशन भी हम सबके पास है। एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, मैं ये कहना चाहूंगी कि यस, इट इज अ होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल एंड द यूनिवर्सिटी सिस्टम टू इनकलकेट सर्टन मॉरल वैल्यूज टू द इन द स्टूडेंट्स। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का एक टैगलाइन है, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग जो मानव रचना लाइफ स्किल प्रोग्राम्स हैं उसके थ्रू बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वैल्यूज बच्चों को सिखाते हैं। तो कहते हैं ना कि स्टूडेंट के या एक बच्चे की जिंदगी में दो ही टीचर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एक माँ और एक स्कूल की या यूनिवर्सिटी के टीचर्स, उनकी बात वो सुनते हैं। तो जहां तक मैं कहना चाहूंगी कि घर परिवार का रोल, जैसे अभी मैम ने बताया है कि नारी का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, महिला का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें सहने की शक्ति है, उसके वो इमोशनली स्ट्रांग है। हम हमेशा कहते हैं कि विमेन आर ऑलवेज इमोशनली वीक। नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आई ऑलवेज से दैट वुमेन आर इमोशनली स्ट्रांग, ऑलवेज स्ट्रांग। तो जब बच्चा घर में होता है, हम उनके साथ बात करते हैं। मैं अपने घर की एक एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहूंगी। मैं सिख परिवार को बिलोंग करती हूं, और जब मैं शादी होकर आई थी तो लास्ट डे जिस दिन डोली, जब लावा फेरे होते हैं हमारे दिन में होते हैं, उससे एक दिन पहले मेरे डैडी ने मुझसे बैठ के बात करी। तो वो मुझे कभी भी गुरजीत नहीं बुलाते, वो मुझे गुरुपुत्र बुलाते हैं। तो कहते हैं गुरुपुत्र मेरे साथ बैठो, और ऐसी बातों बातों में उन्होंने बोला कि बेटा अभी तक तो हम तुम्हारे नकली माँ बाप थे, अब तुम असली माँ बाप के पास जा रही हो, वहां जाना और वहां पे कभी भी ऐसा काम मत करना जिसके लिए हमारे पास कोई शिकायत आए। एक सीख माँ बाप ने ये देकर भेजी थी कि असली माँ बाप तुम्हारे अब वो हैं, हम अभी तक नकली माँ बाप थे। जब मैं अपने परिवार में आई, जब मैं शादी होकर जब नए परिवार में आई, एक और नई सीख सीखी मैंने कि मैं नए परिवार में आई हूं, मुझे बदलना है। वो तो परिवार के मेंबर्स हैं, वो तो ऑलरेडी वहीं पर हैं, उनको बदलने की जरूरत नहीं है, पर मुझे अपने को बदलना पड़ेगा, मुझे ढालना पड़ेगा। और शायद वो जो सीख मेरे माँ बाप ने मुझे दी थी, उसने मुझे बहुत, जिसे कहते हैं कि हेल्प किया, क्योंकि मैं यहां आज इस प्लेटफॉर्म में बताना चाहूंगी कि बचपन से ही, चाहे मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूं, पर मैंने कभी भी नॉनवेज, अंडा कभी भी नहीं खाया, ना मैं देखना पसंद करती हूं। तो सभी लोग ये कहते थे कि जब दूसरे परिवार जाएगी, जब शादी होगी तो अपने आप खाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिख फैमिली में इट इज वेरी कॉमन। बट आप बिलीव मी, कहते हैं ना कि कोई भी हर काम आसान होता है सिर्फ, या कोई भी बात मान सकता है सिर्फ मनाने का तरीका आना चाहिए। तो चाहे हमें बच्चों को समझाना है, चाहे हमें अपने सास ससुर को समझाना है, चाहे मेरे हस्बैंड यहां बैठे हैं हस्बैंड को समझाना है, किसी को भी समझाना है, सिर्फ समझाने का तरीका होना चाहिए, सब समझते हैं। तो वहां पर हम वैल्यूज की जब बात करते हैं, तो बच्चों में जो वैल्यूज हैं वो घर से ही आती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि हम सारे वर्किंग लेडीज हैं, सब बिजी हैं, तो पर हमारा कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि हम अपने घर के रोल को भूल जाएं, हम उसको ना करें। ये हमने अपनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि हम बाहर जाके काम करेंगे, पर कहीं ये नहीं लिखा कि आप अपना जो घर, जैसे शारदा दीदी ने कहा कि हमें अपने रोल, जो हमारा अपना रोल है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अगर हम उन दोनों में बैलेंस करके चलते हैं तो बच्चों में भी वही चीज आएगी, और मुझे लगता है कि हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं छोटी छोटी बातों से। और एक चीज और छोटी सी साझा करना चाहूंगी, जब हम घर परिवार फैमिली रिलेशंस की बात करते हैं, तो यहां मेरी ये सोच ये कहती है कि माँ कभी सास नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती, बेटी कभी बहू नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ये बिल्कुल गलत है जब हम कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो या तुम मेरी बहू को कहते हैं बेटी हो। हर एक का रोल अपना है और हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और उन्हीं रिश्तों में स्वाद आता है, उन्हीं रिश्तों में मिठास आती है। एंड यू बिलीव मी, ये जो आज मैं इस मंच पर बैठी हूं, ये जो मैं अपने को कहती हूं कि यस आई एम एम्पावर्ड वुमेन, दिस इज ओनली एंड ओनली बट बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड हु इज सिटिंग ओवर हियर। मैंने अपनी बीएड की पढ़ाई, एमबीए की पढ़ाई, अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई सब शादी के बाद की है, और सिर्फ अपने फादर इन लॉ की वजह से की है। ही वॉज द ड्राइविंग फोर्स कि नहीं बेटा तुम्हें पढ़ना है। आज आप मानेंगे, जब मैंने यूनिवर्सिटी में बोला कि मैं 4-5 दिनों के लिए जा रही हूं, तो एवरीवन वाज लुक शॉक्ड मैम आप छुट्टी ले रहे हैं? मैंने आज शायद से 5-6 सालों के बाद छुट्टी ली होगी और मैं यहां पर आई हूं, और उसका भी रीजन ये है कि माय फादर इन लॉ इज ऑलवेज बिहाइंड मी कि छुट्टी नहीं लेने, घर बैठ के क्या करोगे, आप जाओ। पर वो इसीलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि मैं घर में अपना पूरा काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शिद्दत के साथ कंप्लीट करके घर से बाहर निकलती हूं। तो मुझे लगता है ये चीजें अगर हम लोग करेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे।
बहुत ही खूबसूरत बात है, सो नाइसली स्पोकन। जो बात अभी गौरजीत जी कह रहे हैं उसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये प्रश्न है महिलाओं से संबंधित प्रश्न है, जहां पर ये प्रश्न लिखने वाले लिखते हैं कि आज महिलाएं एक दूसरे को नहीं समझती, घर में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, अपने आप को एक मॉडर्न वुमेन के पिक्चर के साथ कंपेयर करते हुए कभी कभार हम बहुत ही ज्यादा फेमिनिस्ट हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, और इन सब चीजों को करने के प्रयास में हम परिवार में एक दूसरों के नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। एक और प्रश्न ये है जिसका उत्तर गौरजीत ने ऑलरेडी दे दिया है। डॉक्टर गौरजीत, आपने कहा कि महिलाएं इमोशनली वीक नहीं होती, वो स्ट्रांग होती हैं। प्रश्न यही था कि अक्सर लोग समझते हैं कि महिलाएं बहुत भावनात्मक होती हैं, इमोशनल होती हैं, तो प्रश्न पूछा गया था कि हम इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने। एक और प्रश्न जो मिलता जुलता है, ये प्रश्न मैं शीला काकड़े जी की तरफ ले जा रहा हूं, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि घर में सब कुछ ठीक था, एक लड़की शादी करके घर आई, उसके बाद से घर में परेशानियां शुरू हुई। अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इन तीनों प्रश्नों को आप सहेज कर उत्तर देंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। शीला जी,
खुद को चेंज करना है, यही मेरा उत्तर है। तीनों ने खुद को चेंज करना है। अगर हमारे घर में शांति चाहिए, बच्चों को अच्छी तरह से हमने पढ़ाना है, बड़ा करना है, बड़ा शिक्षण देके ही नहीं, वैल्यूज देकर करना है, तो उस हिसाब से हमारा बिहेवियर होना चाहिए। इसके लिए मुझे याद आ रहा है मेरे जीवन का एक किस्सा। बचपन में एकदम मैं छोटी सी थी, मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, टाइम देन सब वैल्यूज वगैरह। एक बार किसी ने मुझे कुछ दिया गिफ्ट और आई वॉज ट्राइंग टू हाइड दैट फ्रॉम हिम, तो उनको बाद में समझ में आया, उनको ही डिडंट वांट मी टू टेक एनी गिफ्ट फ्रॉम एनीबॉडी। तो वो था कि और मुझे वो पसंद आया था, मैंने ले लिया और छुपा रही थी मैं, उनके समझ में आ गया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया उसके बाद कि बेटा झूठ नहीं बोलते, किसी ने कुछ दिया है तुमको पसंद है, आपने मुझे कहना होता मैं आपके लिए लाता, पर यह आपने किया वो गलत है। तो तब से मेरे दिमाग में झूठ और सच डिफरेंस एकदम ठोस करके बैठा। आज तक आई कैनॉट टॉलरेट एनीथिंग झूठ। ये बात ऐसे अगर आपके वैल्यूज इनकलकेट किए हुए हो तो मेरे ख्याल से आप फैमिली में बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा कर सकते हो, उनको अच्छे वैल्यूज दे सकते हो। दूसरा जो आपने कहा बहू घर में आती है, वही है ना, बहू घर में आती है तो सब बिगड़ गया, कैसे वैल्यूज वो लेकर आती है इसका ज्यादा महत्व यहाँ पे है। अगर उसने सास का भी उसमें रोल रहता है, इफ शी फील्स कि बहू के वैल्यूज या उसका आचरण ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसको अच्छे से समझाना चाहिए, शांत रह के झगड़े झगड़े नहीं करने चाहिए, जहां पे वो रॉन्ग जाती है उन्होंने उसको समझा देना चाहिए कि दिस इज नॉट द वे इन आवर फैमिली, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और उसको प्यार से अगर समझा देंगे तो वो मान जाएंगे, झगड़े नहीं होंगे। और कौन सा प्रश्न?
तीसरा प्रश्न ये था कि आज लोग महिलाओं को इमोशनली वीक समझते आए हैं, अगर
वीक तो नहीं है महिला, वीक तो महिलाएं नहीं है, अगर दृढ़ता के दीदी ने जैसे कहा दृढ़ता से वो अगर ठाम ले कि मैंने ये काम करना ही है और मेरे में चेंज लाना ही है, तो ये बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। ये मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से ही बता रही हूँ, मीन्स 100% यू कैन डू इट इफ यू जस्ट थिंक यस आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, यू कैन डू इट।
बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बात। शीला जी ने बहुत ही सिंपल सी चीज कही कि हम समस्याओं के लिए सॉल्यूशंस बाहर खोज रहे हैं, प्रॉब्लम्स के लिए वी आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस आउटसाइड। वेयर इज द सॉल्यूशन? सुनाई नहीं दिया? वेयर इज द सॉल्यूशन? इनसाइड, इनसाइड। वेरी ब्यूटिफुली सेड। ये प्रश्न है अगेन एक जनरेशन गैप के बारे में प्रश्न है, तीन चार प्रश्न है, मैं एक साथ उसे पढ़ के सुना रहा हूं। जनरेशन गैप की वजह से कभी कभी हमारे और पेरेंट्स के बीच कुछ विषयों पर सहमति नहीं बन पाती, जबकि हम उस समय सिर्फ हमारा पक्ष रख रहे होते हैं और सामने वाले को उनका पक्ष सही लग रहा होता है। ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये सामंजस्य बने? दूसरी बात, बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, अगर उनसे पूछो तो यही जवाब मिलता है कि आप नहीं समझोगे, हमारे जनरेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। स्वस्तिका दीदी जी,
आपने जो क्वेश्चन बताया वो हम यूनिवर्सिटी में कॉलेज में फेस कर ही रहे हैं। आज की जनरेशन बोलती कुछ है, करती कुछ है और सोचती कुछ है, इसीलिए उनको पहचानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी ने एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाई है कि आप उनके लेवल तक जाइए, आप उनके मानस पट तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। वो एक दिन की बात नहीं रहेगी, क्योंकि जनरेशन गैप में आज की जनरेशन अपने दादा दादी के साथ या मदर फादर के साथ जो रिलेशन होना चाहिए वो है नहीं, क्योंकि उनका रिलेशन है मोबाइल और पीयर फ्रेंड्स। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक पर्सन आया, उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी निमिषा दीदी है, जब भी मैं उनसे मिलती हूं तो उन्होंने मेरे साथ 5 साल तक धीरज रखी और 5 साल तक उन्होंने मुझे अलग अलग एंगल से समझाया, तब मैं कुछ सीख पाई हूं। मुझे ये बात उनकी बहुत ही अच्छी लगी कि उनके गुरुजी ने उनको 5 साल तक धीरज रखते हुए उनकी टेक केयर की। और आज की युवा मानस पीढ़ी का जो मानस है उनको बहुत ही पेशेंस रखते हुए, प्रेम से उनकी टेक केयर करते हुए अगर हम चलेंगे तो ये जनरेशन गैप तो गैप को हम डिलीट कर पाएंगे। क्योंकि माँ बाप की बात क्या है और बच्चों की बात क्या है, उनमें हमें मीडिएटर बनना रहता है और ये काम हम कर रहे हैं। और मेरे साथ गुरुजीत सी भी ये बात को शायद बढ़ावा देगी ही कि ये जनरेशन में हम सिर्फ पेशेंस, सिर्फ लव और प्रेम 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 ही हम बांटे तो ही काम बनेगा।
बिल्कुल सही। बस इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि हम इस जनरेशन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हमने इतनी एक्सपेक्टेशंस अपनी इस जनरेशन को नई जनरेशन से रख दी हैं। हम कहते हैं जनरेशन गैप, हम दोष उस जनरेशन को देते हैं, पर दोष इस जनरेशन में है क्योंकि हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस उस जनरेशन से बहुत ज्यादा हैं। और जब वो बच्चे हमारे पास आते हैं कुछ भी बात करने के लिए तो हम उनको टाइम नहीं देते। फिर से मैं इस चीज के लिए, जैसे मैम ने भी बताया, हमें उनको समय देना पड़ेगा, हमें उनको सुनना पड़ेगा। उनकी जैसी भी बातें हैं वो बहुत सिंपल तरीके से कह देते हैं ना, मम्मा आप नहीं समझोगे, डैडी आप नहीं समझोगे। क्यों कह देते हैं? क्योंकि हम एक्चुअली में समझते नहीं है, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते उनको समझने की। तो हमें समझना पड़ेगा. और ये प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, डेफिनेटली हम अपने बच्चों को समझ पाएंगे और इस पीढ़ी को नए रास्ते में, या जो पेशेंस की हम बात कर रहे हैं, शेयरिंग और केयरिंग की हम बात कर रहे हैं, उस पर जरूर ला पाएंगे.
एक सुझाव ये भी रहेगा उनके लिए कि हम दूसरों को सुने. आजकल हम सुनते नहीं है या फिर आधी बात ही सुनते हैं. एक सेंटेंस बोला और हमने उनको आंसर दे दिया. ऐसी बात नहीं, हमारी लिसनिंग स्किल भी बढ़े और एज ए पेरेंट्स की ओर से वो भी अच्छी तरह से सुनेंगे अपने बच्चों को, तो सहजता से बात ओवरकम कर पाएंगे.
समय का अभाव है पर टीचर्स हैं तो कुछ ना बोलेंगे ही बोलेंगे. तो अभी जैसे मैम ने कहा कि सुनना चाहिए या सुनने का हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है. और अभी मेरे जहन में एक बात आई, अब एकदम से मैं भूल गई, और वो एक्चुअली में रियलिटी है कि हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए और उनके जो रिएक्शंस हैं, अब मुझे याद आया, उनके जो एक्शंस हैं उन पे इमिडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए. उनका कुछ भी एक्शन है, अगर वो गुस्सा है रिस्पॉन्स, अगर वो गुस्सा है, किसी बात से खिजे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, हमें उनको समझना चाहिए और एकदम से रिएक्शन नहीं करना चाहिए. तो उनके एक्शन से हमारी रिएक्शंस बदलनी नहीं चाहिए. हमें एज अ पेरेंट, एज अ रोल मॉडल, उनके सामने एक बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, सहनशीलता के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तभी हम इस पीढ़ी को समझ सकते हैं. ये पीढ़ी वाकई में ही कॉम्प्लिकेटेड है. और जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं, मैम हमको स्ट्रेस है, अरे भाई काहे का स्ट्रेस, स्ट्रेस होता क्या है? मैं एक सिंपल क्वेश्चन उनसे पूछती हूँ, बेटा स्ट्रेस होता क्या है? मैम वो पता नहीं, पर स्ट्रेस है. मैम हमको पता नहीं कि हमारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी. अरे अभी आप सेकेंड ईयर में हो, अभी आप पढ़ाई करो, बाद में सोचेगा. सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हमारी आजकल की जिंदगी में एक्चुअली हम लोगों को परेशान कर रही हैं. और इसीलिए स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है. ओम शांति.
एक बात ऐड करना चाहूंगी, बी अ जस्टिस, जस्ट आइस, कीप योर माइंड लाइक ए आइस. जजेस कोई भी बात का डिसीजन देने से पहले कितनी आर्ग्यूमेंट्स सुनते हैं, कितना पीसफुली, कितना कॉन्सेंट्रेशन से और कितना पेशेंटली, और उसके बाद उनकी जो जजमेंट आती है एक ही सेंटेंस में. तो हमें अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, सुनने की कला को धारण करना चाहिए और उसके बाद हमको जो उनसे कराना है आप बहुत परफेक्टली एक्यूरेटली उनसे करा सकेंगे, लेकिन माइंड को बहुत बहुत शीतल और ठंडा रख करके उनको सुने. इमीडिएट नो रिएक्शन.
मैं समझता हूं कि अगर मैं अगला प्रश्न न भी करूं तो ये जो फ्लो चल रहा है इससे बहुत कुछ अच्छा निकल कर आ रहा है. मगर कुछ प्रश्न है उनको जस्टिस करना है. जैसे दीदी कह रहे थे कि आज सुनना और ठंडक के साथ सुनना, तुरंत रिएक्ट नहीं कर देना मगर रिस्पॉन्ड करना. एक प्रश्न वही था कि अगर बच्चे हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलते, उनसे हम एक बेसिक बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो उतना भी नहीं दे रहे हैं तो हम उनको कैसे सिखाएं, हम क्या करें जब बच्चे बहुत स्टबर्न हो जाएं, वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करें, पेरेंट्स की बात को नहीं सुन रहे हैं. तो मैं समझता हूँ जवाब ऑलरेडी आ गया है हमारे पास. अब लगभग 10 प्रश्न हैं और 10 मिनट है. अगर मैं रैपिड फायर खेलूं तो शायद ये हो सकता है, मगर मैं 3 प्रश्नों को जोड़कर अगले 3-4 मिनटों में सरला दीदी जी से उसका उत्तर चाहूंगा. आज बच्चों को बहुत सारे माता पिता बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल भेज देते हैं, खासकर हायर एजुकेशन के लिए तो बच्चे हॉस्टल चले ही जाते हैं, मगर जैसे वहां चले जाते हैं, घर के परिवेश से बाहर हो जाते हैं, तो वहां कुसंग मिलता है, वहां खराब दोस्त मिल जाते हैं या गलत संग हो जाता है, तब हम कैसे उनकी परवरिश का ध्यान रखें। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए, जॉब के लिए देश के बाहर चले जाते हैं और फिर वापस घर नहीं आना चाहते, माता पिता से दूर ही रहना चाहते हैं। एक और प्रश्न मिलता जुलता है कि बच्चे बचपन से तो बहुत अत्यंत मृदु, समझदार, अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, अचानक टीनेजर्स में आते ही बुरी बातें, बुरे दोस्त, अलग अलग चीजों में घुल मिल जाते हैं, तो फिर उनका सुधार कैसे किया जा सके, फैमिली उसके लिए क्या कर सकती है, उसका मार्गदर्शन करें।
क्योंकि वर्तमान समय ये प्रश्न एक गहरा स्वरूप ले चुका है, बच्चों को हॉस्टल में हायर एजुकेशन के लिए भेजना भी पड़ता है और कहां कहां कुसंग में आकर के उनके कैरेक्टर में कई कमियां आ रही हैं। लेकिन हमारा फर्ज है हम उनको वो संस्कार दें, क्योंकि कांटेक्ट तो फोन के द्वारा पेरेंट्स के साथ में रहता है, तो पेरेंट्स भी उनकी उन परिस्थितियों को समझ करके उनको सहयोग दें। कॉलेज या हॉस्टल लाइफ में जो उनका संग है, वो संग ऐसा है जिसमें आजकल सबसे ये डेंजर मोबाइल, जिसके कारण से उनका कैरेक्टर दिन प्रतिदिन नेगेटिव जा रहा है, तो हम उस वातावरण के अंदर में भी एक तो अपने पॉजिटिव थॉट्स दें, दूसरा अपने कॉन्टेक्ट से उनको एम्पावर करें, ताकि उस वातावरण में रहते हुए वो अपने आप को उससे अलग कर सकें। दूसरा था,
दूसरा प्रश्न ये था कि बच्चे बचपन में तो ठीक होते हैं, टीनेजर्स में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, कुसंग, बुरे दोस्त, बुरी आदतें,
क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर में उनको उसमें भी संग की आवश्यकता है। यदि उन्हें अच्छा संग दिया जाए तो उससे वो अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। बचपन में परिवार है, वो पालना है, जिसके कारण से उनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, और बड़े होने के बाद जब उस संग में जाते हैं तो वो संस्कार भी बाहर आते हैं। लेकिन हम उन संस्कारों से उनको मुक्त करने के लिए ऐसी कुछ एजुकेशन, ऐसी कोई उनके लिए गेम्स, ऐसी कोई सोसाइटी जो जिसको वो मेंटेन करें, तो उनके अंदर में चेंज आ सकता है। बाकी मैं शारदा बहन को ऑफर करूंगी और इसको क्लियर करें।
क्योंकि शारदा दीदी के पास माइक चला ही गया है तो मैं एक और प्रश्न ऐड कर देता हूं। दीदी, हम सभी जानते हैं कि आज पैसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है बच्चों को। जैसे अभी गौरजीत मैम कह रहे थे कि उनको प्रोफेशन में भेजना है, नौकरी लगनी है, उसकी स्ट्रेस पहले से आ गई है, और लाइफ में पैसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ले चुका है और वही सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है, जबकि हम वैल्यूज को इग्नोर करते जा रहे हैं। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं?
पहले सरला बेन जी की बात को लेती हूं। जो प्रश्न चल रहा था, बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं और बड़े होते हैं तो थोड़े बिगड़ जाते हैं। जब बच्चा छोटा है तो माँ के आंचल और उसकी छत्र छाया में रहता है, घर के वातावरण में रहता है, तो उस घर के वातावरण के वाइब्रेशंस में माँ बाप जो कहते हैं जी हाँ जी करके चलता है। लेकिन जब वो कॉलेज में चला जाता है, यूनिवर्सिटी में चला जाता है, हॉस्टल में चला जाता है, तो वो सोचता है अभी मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, और उसको वो कहता है अभी हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं। स्वतंत्रता क्या होती है उसको नहीं मालूम है, उसके
उसके लिए उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, और जैसा वो कॉलेज में देखता है और बच्चों को देखता है और उनके संघ के रंग में वो आ जाता है, और उसमें आते आते कुछ ऐसी हैबिट्स वो फॉर्म कर लेता है जो अपने पेरेंट्स को, घर के वातावरण को शुरू में तो वो मिस करता है, लेकिन उसी संग में आकर के सिगरेट, ड्रग्स, फिल्म्स, नाइट क्लब्स, इन सब हैबिट्स में वो चला जाता है, जिससे पेरेंट्स भी अवेयर नहीं रहते। और इस बीच अगेन मैं ये कहूंगी, पेरेंट्स का बच्चों के साथ में वो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए रेगुलर, एवरी सेकेंड डे और थर्ड डे, बेटा क्या कर रहे हो, क्या कॉलेज में चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा कंपेशन कि पेरेंट्स का ध्यान मेरे ऊपर है, वन से मंथ अगर नजदीक में कहीं है, पेरेंट्स उनको मिल करके आए, तो उसमें ऐसे संस्कार डाले जाएं, और वो संस्कार कहीं भी वो दुनिया के कोने में चला जाएगा, जो पेरेंट्स ने उसको दिया है वो भूल नहीं सकेगा, और कोई भी ऐसे संघ के रंग में वो नहीं आ सकेगा। आज मनी की वैल्यू हो गई है। हमारा एक एंशियंट मोटो था, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। लेट इट बी रिवर्स। करेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, एंड वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमको वैल्यूज की वैल्यूज ही नहीं रही है, स्पेशली आज की जो यूथ जेनरेशन है, उनको अगर वैल्यूज की बात की जाए तो कहेंगे इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। ओवरनाइट उनको मल्टी 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 बिलियनर बन जाना है, और वो सोचते हैं कि यही हमारे सुखों का साधन है, पैसा नहीं है तो सुख नहीं है। एक स्टोरी सुनाती हूं। एक राजा था, उसको एक बीमारी हुई, बहुत सारे वैद्य और हकीम उसका इलाज करने के लिए आए, कोई उसका इलाज नहीं कर सका, और जो जो नहीं कर सकता था सबको जेल में डाल दिया। हार गए। आखिर राजा ने अपने सैनिकों को ऑर्डर किया कि सारे राज्य में कोई ऐसा हकीम नहीं है जो मेरा इलाज कर सके। फिर एक आया और उसने कहा, मैं राजा का इलाज कर सकता हूं। उसने कहा, कहिए क्या चाहिए। कहा, मुझे ऐसे व्यक्ति का कोट चाहिए जिसके पास शांति और सुख दोनों हो, उसका कोट लाकर के राजा को पहना दिया जाए तो इसकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को ऑर्डर मिला, सारे राज्य में घूम लिया, सारा दिन कोई नहीं मिला, राज्य की सीमा तक पहुंच गए। एक बहुत आलीशान हवेली थी, महल जैसी। सोचा, इस महल में, इस हवेली में जो रहता होगा उसके पास जरूर सुख शांति होगी और कोट तो मिल जाएगा। अंदर गए, वो मालिक थोड़ा घबरा गया, सोचा पता नहीं क्या भूल हुई है मेरे से जो राजा के सैनिक आ गए। राजा ने कहा, लगता है तुम्हारे पास में बहुत सुख समृद्धि संपन्नता है। कहा, हाँ मेरे जैसी समृद्धि किसी के पास नहीं। तो कहा, फिर सुख भी शांति भी जरूर होगी। कहा, मेरे पास शांति नहीं है। निराश हो गए, चल पड़े। सनसेट हो रहा था और जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस समय दूर से एक बांसुरी की आवाज उनके कानों में पड़ी। आप उस दृश्य को लेके आइए सामने। रास्ते में नदी बह रही हो, सूर्य अस्त हो रहा हो और बांसुरी की धुन आपके कानों में पड़े, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत बहुत सूदिंग, सुखद, और आप उसे गहन शांति और आनंद में चले जाएंगे। जब उन सैनिकों ने वो बांसुरी की तान सुनी, चारों तरफ नजर दौड़ाई, दूर एक रेत के टीले पर कोई बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। उनके सामने एक आशा की किरण आई कि ये जो बांसुरी बजा रहा है, जरूर इसके पास सुख शांति होगी और हमारे राजा का इलाज कोर्ट इसके पास मिल जाएगा। वहां पहुंचे, फकीर बैठा हुआ वो बांसुरी बजा रहा था, उसको पूछा, लगता है तुम्हारे पास बहुत बहुत शांति है। कहा, मेरे जितनी मेरे पास शांति है दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। तो कहा, फिर तो तुम्हारे पास सुख भी बहुत होगा। कहा, मेरा जैसा सुखी इंसान आप दुनिया में दीपक लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो कहा, तब तो हमारे राजा का इलाज आपके पास मिल गया। बोला, कहो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? कहा, आपका कोट चाहिए। कहा, मेरे पास कोट नहीं है। तो आज का युवा जो चाहता है कि धन संपत्ति और समृद्धि, उसके सुख और शांति का, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसको देगा, ये जो उसके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको निकालने की आवश्यकता है, इसको रियलाइज करने की आवश्यकता है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। आज व्यक्ति सीट पर है तो सब उसको सलाम करेंगे, लेकिन अगर उसमें एथिक्स नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, द मोमेंट वो स्टेप डाउन होता है, उसके सामने कोई आंख उठा करके भी नहीं देखता है। लेकिन जिसके जीवन में वैल्यूज है, सारी दुनिया उसके आगे नतमस्तक है। महात्मा गांधी को लीजिए, विनोबा भावे को लीजिए, मदर टेरेसा को लीजिए, उनके पास क्या था? मदर टेरेसा जब इस संसार से गई, 4 pair of dress, उसके पास कोई मकान नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था। शी वॉज जस्ट अ सर्वर ऑफ द सोसाइटी। और उसके अपोजिट प्रिंसेस डायना को देखिए, उसके पास क्या नहीं था, क्या नहीं था, लेकिन एक प्यार के लिए वो सदा भटकती रही, उसकी चाहना करती रही, लेकिन उसको सच्चा प्यार, इतना सब कुछ होते हुए भी अपनों से नहीं मिला, और उसका एंड क्या हुआ? आज आवश्यकता है इसको रियलाइज करने की, अंडरस्टैंड करने की, अवेयर होने की, जो हमको ये राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बहुत क्लैरिटी से समझने को, सीखने को मिलता है, जिसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन आज के युवा को चाहिए, आज के समाज को चाहिए, हर नर नारी को चाहिए कि सच्चा सुख शांति आनंद किस में है। ओम शांति।
कहने के लिए लफ्ज नहीं है। इस पूरे पैनल के इस डिस्कशन में जो चीजें निकल कर आई हैं, वो इतने रिच हैं, इतने सिंपल हैं, इतने रिलेवेंट हैं कि हम में से हर कोई कैपेबल है कि उन चीजों को, उस ट्रेजर को हम साथ में ले जाएं। आखिरी प्रश्न, मैं समझता हूं इस सभा के सबसे छोटे सदस्य ने लिखकर भेजा है, आयु 8 वर्ष, और प्रश्न है, आई वॉन्ट टू नो हाउ टू कंट्रोल माई एंगर। प्रश्न के लिए ताली बजने चाहिए। हम में से बहुत ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि अरे गुस्सा कर लेंगे, गुस्से के बिना काम नहीं होता, जैसे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, मगर आज उसमें वो चेतना है कि वो उसे कंट्रोल करना चाहता है। और हम जो आगे की पीढ़ी के बारे में कह रहे थे, वो पीढ़ी सजग है, वो चाहती है कि उसे कुछ अच्छा सिखाया जाए। मैं सरला दीदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दीदी इस पर प्रकाश दें, और मैं शारदा दीदी जिन्होंने प्रश्न लिखा है अगर वो सामने हैं तो आ सकते हैं स्टेज पे, दीदी उनको बुला रहे हैं। नहीं, पीयूषाए वहां है, आ रहे हैं, तालियां बजाए भाई, आ रहे हैं, आइए आइए ऊपर, कम रनिंग, आइए आइए। पहले तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि हम अपनी कमजोरियों को, अपने चैलेंजेस को सामने रख सकें कि हाँ ये मैं नहीं कर पा रहा हूं।
आगे आ जाओ, आगे आओ,
आए सामने आ जाए, कोई बात नहीं, वो आ गया, आ जाए, आ जाए, इट्स ऑलराइट।
अपना नाम बताएं।
मनन।
कहाँ से आए?
बॉम्बे।
बॉम्बे से आए, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
थर्ड क्लास।
वह क्लास 3 में पढ़ता है और मनन ने इतना मनन कर लिया है कि वो समझ रहा है कि मेरे एंगर को कंट्रोल करना चाहिए।
किसके ऊपर गुस्सा आता है?
मुझे जब मेरी प्यारी बहन है, जब वो मुझे कुछ नहीं देती मुझे गुस्सा आता है।
फिर गुस्सा आता है तो तुम क्या करते हो?
कुछ नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़ी देर बाद खुद रुक जाता है।
खुद रुक जाता है।
वेरी गुड, अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू मनन कि आप आए और आपने अपना प्रश्न दिया।
हाँ।
जी
मनन, गुस्सा होता क्या है?
ये पैनल का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था।
तो गुस्सा तो कुछ होता ही नहीं बेटा, और जब भी गुस्सा आए तो ये सभी के लिए है, सभी बच्चों के लिए है। गुस्सा आए तो आपको एंगर कंट्रोल करने का सिर्फ एक मैकेनिज्म है, अपनी मम्मी के पास चले जाओ और सारा गुस्सा उनके ऊपर निकाल दो।
अगर मम्मी नहीं हो तो?
ओहो,
तो पापा से बात करो।
मैं स्कूल में होता हूँ, कोई नहीं होता।
तो थोड़ी देर के लिए गुस्से को कंट्रोल, ऐसे मुट्ठी फिस्ट को बंद करो, ठंडा ठंडा पानी पियो, ओम शांति बोलो, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम 3 बारी जाप करो, देखो आपका गुस्सा भाग जाएगा।
ओके।
और एक बात, कुछ आपके पास नाश्ता हो तो हो, सबसे पहले खा ली।
मैं 8 बजे स्कूल पहुंचता हूँ, 10 बजे खा लेता हूँ।
जब गुस्सा आए तब।
स्कूल में मुझे अलाउड नहीं है ऐसे ही खाना बस।
लेकिन गुस्सा आएगा ही नहीं, अब तो आपने सबके सामने बात रखी है ना, और दीदी ने कितना अच्छा आंसर दिया कि आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हो उनका नाम स्मरण 3 बार 5 बार ले लीजिए, और कुछ आपके पास घर में अगर गुस्सा आए तो कुछ खा लीजिए। ये साइंटिफिक रीजन है बेटा कि आप कुछ खा लोगे तो शांत हो जाओगे।
और गुस्से को बोलना आज नहीं कल करूंगा, जब आए ना तब उसको बोलना ठीक है मैं कल खूब जोर से करूंगा पर आज नहीं, चला जाएगा।
और एक बात मैं बताऊं, हम छोटे थे और गुस्सा आता था तो बताया जाता था 1, 2, 3 बोलो, 10 तक बोलो।
मेरी मम्मी ने वो बताया था।
नहीं हुआ
10, मतलब वो 20 से, हाँ 20 से 1 या फिर 10 से 1,
उल्टा गिनती करने,
उल्टा उल्टा गिनती करने को बोला।
किया हो?
वो जब गुस्सा नहीं आता तब आता है, गुस्सा आता है मैं वो भूल जाता हूँ।
आप इधर आए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ, कोई बात नहीं।
कितना इनोसेंट होते हैं बच्चे, हा? कितना सच्चाई से उस बात को सबके सामने रख रहा है।
मैं समझता हूँ ब्रह्मा कुमारीज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो रहा है वो लोगों से, थैंक यू, लोगों को व्यसनों से मुक्त करना, क्रोध से मुक्त करना, ये ब्रह्मा कुमारीज की सिंगल मोस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी रही है। लाखों लोगों को नशों की लत से छुड़ाया, बीड़ी तंबाकू सिगरेट बुरी आदतों से छुड़ाया, और दूसरा लोगों के जीवन में शांति लाई, उन्हें क्रोध मुक्त किया है। लाखों लोग आज उसके जीवन उदाहरण हैं। और जैसे दीदी जी ने कहा, राजयोग एक ऐसी औषधि है जो मन के इन विकारों को दूर करती है। छोटे से बच्चों से लेकर वयोवृद्धों तक हर कोई इस योग को कर पाया है। मैं शारदा दीदी से अनुरोध करता हूँ, इस सेशन के क्लोजर के रूप में 3 मिनट का मेडिटेशन कराएं, वो पॉजिटिव अफर्मेशंस दिलाएं, ताकि हम सब शांत हो सकें। हम अपने कमजोरियों को, क्रोध को, एंगर को, अपनी दूसरी बुराइयों को ओवरकम कर सकें। शारदा दीदी जी,
ओम शांति मीन्स आई द सेल्फ इज पीसफुल, आई द बीइंग इज पीसफुल। And the source of peace is Almighty Authority. जब स्वयं का अनादि गुण शक्ति है और शांति के सागर शक्तियों के स्रोत पिता परमात्मा की संतान हूं, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है, कभी भी अशांत नहीं हो सकती। बार बार शांति के सागर ऑलमाइटी की स्मृति आत्मा को शांति की शक्ति से एम्पावर करेगी। आत्मा शांति पृथ्वी शांति प्रकृति शांति अग्नि शांति वायु शांति शरीर जो 5 तत्वों का है, 5ों ही तत्वों को शांत कर रहे हैं, वो शीतल ताकि मैं सुस्ता कर रहे हैं। अंग अंग शीतल हो रहा है, विचार शांत हो गए हैं, नयनों में स्पिरिचुअल लव महसूस हो रहा है, वाणी में मधुरता शीतलता की अनुभूति हो रही है। कदम कदम उस शांति पथ की मंजिल की ओर बढ़ रहा है, महसूस कर रही है, परम शांति का स्रोत, सारी सृष्टि का नियंता, हम सर्वात्माओं को शांति की शक्ति की किरणें दे रहे हैं और मैं आत्मा स्वयं को उस शांति का स्वरूप बनाते हुए अपने चारों ओर शांति का आभा मंडल तैयार कर रही हूं, जिस शांति के ऑरा में कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये शांति की शक्ति का आभा मंडल शक्तिशाली है और मैं आत्मा इसका स्वरूप बन गई हूं। समा लीजिए स्वयं में इस शांत स्वरूप स्थिति को, समा लीजिए, समा लीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी पैनलिस्ट का। और इस मेडिटेशन की अनुभूति से हम सभी ने जो चीजें सुनी हैं उस चीज को एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिला। हमारे मंच पर जो हमारे गेस्ट पैनलिस्ट आए हैं उन सबको एक छोटी सी सौगात भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय चक्रधारी दीदी जी को और साथ में डॉक्टर सविता दीदी जी को कि वो मंच पर पधारें और हमारे पैनलिस्ट को सम्मानित करें। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। थैंक यू नमन। इस सेशन की समाप्ति के पश्चात आप सभी डिनर ब्रेक पे जाएंगे। 8:30 बजे इसी हॉल में कल्चरल प्रोग्राम आपके लिए है, तो आपके मनोरंजन के लिए भी एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप 8:30 बजे पुनः भोजन करके इस हॉल में आएंगे। सर्वप्रथम आदरणीय चक्रधारी दीदी जी गुरजीत कौर जी को सम्मानित कर रहे हैं शॉल उड़ाकर। हम सभी करतल ध्वनि से उनके बहुत ही वैल्यूबल इनपुट्स के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय चक्रधारी दीदी जी से कि श्रीमती शीला काकड़े जी का शॉल उड़ाकर सम्मान करें। डॉक्टर सविता दीदी गौरजीत कौर जी को ईश्वरीय प्रसाद एवं गिफ्ट दे रहे हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय चक्रधारी दीदी जी से कि स्वस्तिका दीदी जी हमारे बीच राजकोट से पहुंचे हैं, उनका भी शॉल उड़ाकर सम्मान करें। और बहुत ही सुंदर आज के इस सत्र में जो उनके भाव रहे हैं, उनके ब्लेसिंग्स रहे हैं, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। मैं साथ में चक्रधारी दीदी से यह भी अनुरोध करता हूं कि आज के हमारे सबसे इंटरेस्टिंग पैनल के क्वेश्चंस देने के लिए नमन को भी एक बहुत ही प्यारे से मनन को भी क्षमा करें मनन को भी ईश्वरीय प्रसाद का गिफ्ट दें, आदरणीय दीदी जी देंगे। और मैं साथ में धन्यवाद करना चाहता हूं आज के हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्सेस सरला दीदी जी का और शारदा दीदी जी का। तहे दिल से जोरदार तालियों से पूरे पैनल का अभिनंदन करें। मनन के बहुत अच्छे विचार सागर मंथन के लिए दीदी जी के ब्लेसिंग्स और ईश्वरीय प्रसाद। अभी दीदी ने इतने अच्छे ब्लेसिंग्स दे दिए। मैं सभी पैनलिस्ट से अनुरोध करता हूं कि स्टेज के सामने आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए।
मैं जाऊं?